ஓம் சாந்தி.
आज की अव्यक्त वाणी है 31/12/2017। सभी जो भी बैठे हैं, परिवार एक ही परिवार है, सारे संसार में कलयुग के अंत में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो दुनिया में कितने धर्म पिता है और उनके कितने परिवार हो जाते हैं। मूल रूप में देखें तो 10 परिवार 10 धर्म के 10 परिवार। लेकिन आज अर्थात 31 दिसंबर 2017 को एक ही परिवार है, जहां बच्चे बैठे हुए हैं। कौन सा परिवार? नई सृष्टि बनती है तो कौन सा परिवार तैयार होता है? पहले पहले जैसे स्थूल दुनिया है, जड़त्वमयी सूरज चांद सितारों की दुनिया है, धरणी है, और भी 9 ग्रह हैं, तो सबके बीच में एक सूर्य ही सर्वोपरि है और सूर्य का परिवार सारा संसार हुआ। परंतु वो तो जड़ सूर्य है और यहाँ है वेद की बात, ज्ञान सूर्य है, चैतन्य है, चैतन्य आत्माओं का परम पिता है। तो उसे पिता के द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने के बाद जो पहला पहला एक ही परिवार तैयार होता है वो कौन सा परिवार हुआ? सूर्यवंशी परिवार। तो एक ही परिवार में सभी बैठे हैं, बैठे हैं माने वर्तमान की बात है, जो एक ही परिवार है वर्तमान में। ऐसा परिवार कभी सुना था? कि सूर्यवंशी परिवार भी होता है। देखा था जो नई सृष्टि के आज में होता है तो अभी तो कलयुग का अंत है। हाँ तो देखने की बात ही नहीं। और है भी सूर्यवंशी परिवार वाले लोग इस दुनिया में तो प्रायः लोप है। क्योंकि जो सत्य है, कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, उसका परिवार भी सत्य ही होगा। कैसा होगा? सत्य का परिवार भी सत्य ही होगा। सारे संसार के लिए कल्याणकारी होगा और फिर सुंदर भी होगा। तो ऐसा परिवार किसी ने न सुना न कोई देखा। ऐसा अलौकिक परिवार अभी ही देखा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर न पास्ट में देखा न कभी सुना, अभी ही देखा। और अभी भविष्य के लिए तैयार। हिस्ट्री में और कभी पहले न तैयार हुआ, चाहे पौराणिक हिस्ट्री हो चाहे मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री हो। ऐसा सूर्यवंशियों का परिवार कभी किसी ने न सुना न देखा। और ये परिवार भविष्य के लिए तैयार हो रहा है, माने आने वाली जो नई दुनिया है भविष्य की, कहे अगली चतुर्युगी या अगले कल्प में जो दुनिया आने वाली है वो भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। तो जो भी तैयार होने वाले हैं अलौकिक परिवार में, वो आज देखने में तो आ रहे हैं, सुनने में भी कोई कोई के आ रहे हैं, अभी और आज की ही बात है। और अभी जब ये वाणी चल रही है, माने आज जब ये वाणी चल रही है तो वाणी में ही बताया अगले वर्ष की बात। उस अगले वर्ष में नया साल, नया वर्ष माने 2018 कितना बढ़िया होगा। माने अभी आज है 31 दिसंबर 2017, फिर कल से आरंभ होगा नया वर्ष, नया साल। कितना बढ़िया, क्यों 17 साल तक जितने वर्ष हुए ब्राह्मणों की संगम हुई दुनिया में, वो इतने बढ़िया नहीं, इसलिए बढ़िया नहीं कि माउंट आबू से चली, शिव सुप्रीम सोल बाप की, ब्रह्मा द्वारा चली, मुरली कहो, ब्रह्म वाक्य कहो, वेद वाक्य कहो, उसने बता दिया कि तुम सूर्यवंशी बच्चों के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का 40 वर्ष से 50 वर्ष का टाइम है। माना तुम बच्चे जो ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी के रूप में प्रत्यक्ष होने लगते हो, जैसे सूर्य अखंड प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही बच्चे भी उस ज्ञान सूर्य के अखंड ज्ञान प्रकाश के भंडार हैं, क्योंकि सब सितारों में ये धरती के चैतन्य सितारे हैं ना, उन चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया बसी हुई है, तो अपनी अपनी दुनिया के अखंड ज्ञान प्रकाश के भंडार हैं। और वो भंडारे नंबरवार अब नए वर्ष में अर्थात 2018 में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। पहले तो बढ़िया से बढ़िया बच्चों का संगठन तैयार होगा ना, तो बताया ये वर्ष कितना बढ़िया है, आप सब भी भविष्य के परिवार में पात्र तैयार दिखाई दे रहे, भी क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया कि जैसे सूर्यवंशियों का परिवार है, ऐसे ही चंद्रवंशियों का भी परिवार है। चंद्रमा जब संपूर्ण होता है तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, और नई दुनिया एग्जैक्ट तैयार होना शुरू होगी, माने ब्रॉड ड्रामा का पहला सीन शुरू होगा तो ब्राह्मण बच्चे सुदेवता बनकर के सोलह कला संपूर्ण ही प्रत्यक्ष होंगे। तो नंबर वार सोलह कला संपूर्ण बच्चे चंद्रवंशी परिवार है, क्योंकि उस सब परिवार में पहला पहला प्रिंस जो प्रत्यक्ष होगा वो है कृष्ण। जहां से भक्ति मार्ग में इस सृष्टि की यादगार बनी हुई है, कि सत्युगुण में सोलह कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में चौदह, फिर गति कला होती जाती है। तो वो सोलह कला संपूर्ण क्यों, सत्रह क्यों नहीं, ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? क्योंकि जो कलातीत सूर्य है उसके संसार में सबसे शीतल स्वभाव वाला चंद्रमा ही है, जिसे कहते हैं कृष्णचंद्र, और कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने जो कृष्ण है वो बच्चा है, बड़ा होता है तो नारायण बनता है। वसुदेव की औलाद वासुदेव बनता है, वसुधन संपत्ति को कहा जाता है, अर्थात अखूट धन संपत्ति का बच्चा किसके पास है? अखूट धन संपत्ति ज्ञान सूर्य के पास ही है। तो संसार में जो प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य बनकर प्रत्यक्ष होता है उसका बच्चा है, बहुत श्रेष्ठ बच्चा है, शांत स्वभाव का, अत्यंत सहनशील। तो वो बच्चा सोलह कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर तो सृष्टि में सुख भोगते भोगते कलाएं कम होनी है, तो जब कलाएं कम होती चली जाती हैं तो जो पीढ़ियां तैयार होंगी नई सृष्टि में, एक के बाद एक उनकी कलाएं तो घटती ही जाएंगी ना। ऐसे तो नहीं है कि हर युग में सोलह कला संपूर्ण ही बने रहेंगे, सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, जो भी नई नई पीढ़ियों में आते जाएंगे उन आत्माओं की कलाएं कम ही होती जाएंगी, माने रोशनी ज्ञान की क्षीण होती जाती है। तो साबित हुआ कि सूर्य में जितनी रोशनी होती है उतनी रोशनी और किसी ग्रहों में नहीं हो सकती, कोई भी ग्रह परिवार में नहीं हो सकती। तो सूर्य के डायरेक्ट बच्चे जो बनते हैं उस परिवार की यहां बात हो रही है, न चंद्रवंशियों की बात हो रही है, न इस्लाम वंशियों, न बौद्ध वंशियों, न क्रिश्चियन वंशियों की, न उनके सहयोगी वंशियों की बात हो रही है। बाप दादा बैठे हुए जिन बच्चों को देख रहे हैं वो एक ही सूर्यवंशी परिवार है। जो भविष्य नई दुनिया के लिए पात्र दिखाई दे रहे हैं, उनके मुकाबले तो भविष्य नई दुनिया में जो भी नई नई पीढ़ियां आ गई एक के बाद एक कट के, वो तो कुछ न कुछ गिरती हुई कलाओं वाली को पात्र ही कही जाएगी, क्योंकि कलाएं गिर जाती हैं, रोशनी क्षीण हो जाती है, जैसे चंद्रमा की लिए रोशनी क्षीण होती जाती है। कोई ने पूछा नए वर्ष का क्या नाम दें, पूछने वाले का नाम दिया निर्वैर भाई। निह माने नहीं, वैर माने वैर, एक होता है हद का निर्वय और एक होता है बेहद का निर्वय। तो वाणी जब नए वर्ष के लिए इशारा दे रही है कि कितना वर्ष बढ़िया नया वर्ष है, मैंने ब्राह्मणों की से संगम की दुनिया में इतना बढ़िया नया वर्ष है जैसा अब 2018 में आ रहा है, बाप की प्रत्यक्षता वर्ष, तो ऐसा बढ़िया वर्ष का नाम क्या दें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और पूछने वाला बेहद में बेहद का बच्चा ही पूछेगा, हद का बच्चा हद में समझेगा। तो निर्वैर भाई ने पूछा ऐसा दुनिया में कौन सा बच्चा हो सकता है जिसका दुनिया में किसी से वैर न हो, शास्त्रों में तो प्रसिद्ध है जैसे ऊंचे से ऊंचे निराकार शिव के तीन बच्चे हैं, तीन देवताएं, त्रिमूर्ति कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो तीनों बच्चे नंबरवार दिखाए जाते हैं, मनन चिंतन मंथन के हिसाब से भी और बोलने में भी कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव और इनसे भी ऊंचा महादेव। ब्रह्मा को तो महादेव नहीं कहा, विष्णु को नहीं कहा, ब्रह्मा के बच्चे भी ब्रह्म समाजी हैं, विष्णु के बच्चे भी वैष्णव संप्रदायी हैं, लेकिन सबसे ऊंचा परिवार है शैव परिवार, शिव के डायरेक्ट बच्चे। तो ऊंची की संकल्प और वाइब्रेशन भी ऊंचे होंगे ना। ब्रह्मा को वो ही मानते हैं जो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण भी नौ प्रकार के, नौ कुलियों के ब्राह्मण माने गए। तो जब ब्राह्मणों की कुली नंबर वार नीची ऊंची है तो मेंटेलिटी भी ऊंची नीची होगी। तो अव्वल नंबर के जो सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, जो सूर्यवंशी ब्राह्मण की विशेषता है कि जैसा बाप वैसे बच्चे, बाप विश्व का पिता, विश्व का कल्याणकारी, बाप तो होता ही है तो हम बच्चों को कल्याणकारी, चाहे जैसे बच्चे हो सबका कल्याण चाहता है। तो बच्चे भी जो सूर्यवंशी हैं वो सारे विश्व के कल्याणकारी, किसी एक देश के कल्याणकारी नहीं, चाहे सबसे नीची दुनिया के पाताल लोकवासी, राक्षस दैत्य ही क्यों न, उनके भी कल्याणकारी। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के भी कल्याणकारी, और इस पृथ्वी पर जब नई दुनिया होती है सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की सतयुग त्रेता में, तो उनके भी कल्याणकारी। माने किसी से वैर नहीं, क्योंकि सूर्यवंशियों के ज्ञान सूर्य बाप का किसी से वैर नहीं, शास्त्र में गए हैं। विष्णु सिर्फ देवताओं का पक्षधर है, और शिव शंकर बोले ना, जो साकार और निराकार का मेल कहे जाते हैं, उनको देवता भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं। सारी दुनिया के सब आत्माओं का उनसे प्यार है। तो उस ज्ञान सूर्य का जो भी मुख्य बच्चा है, उसका बेहद में नाम है मेरे वैर भाई। आत्मा आत्मा भाई भाई तो सब हैं, परंतु जो भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उनमें अव्वल नंबर हीरो पागदारी कोई तो होगी। तो उसने पूछा, नए वर्ष का नाम क्या दें, जो स्व की उन्नति हो। और नए वर्ष का सेवा के लिए नाम क्या दें, जो सेवा के प्रति हमारा सारा वर्ष ध्यान रहे। नए वर्ष में हमें क्या करना है, क्योंकि नया वर्ष है तो नया ही दिखाना है। तो जो भी दिखाएं जन्म जन्मांतर हमारी प्रारब्ध इसकी है, हमारे साथ रहे जन्म जन्मांतर। तो बोला नए वर्ष को समाप्ति वर्ष नाम दो। किस बात की समाप्ति की शुरुआत? पहले ही बताया था, तुम बच्चों के लिए नंबर बार तम प्रधान दुनिया की समाप्ति की शुरुआत होनी है। तो समाप्त वर्ष हुआ ना, और ये सबसे श्रेष्ठ वर्ष है। क्या इसके मुकाबले और जो भी वर्ष हैं संगम युग के, वो उतने श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य शिव है, इस दुनिया का चैतन्य ज्ञान सूर्य, उसकी हम जयंती भी मनाते हैं, जन्मदिवस मनाते हैं महा और शिवरात्रि के रूप में। तो इसे दुनिया में देखते हैं कि जब मां के गर्भ में निर्जीव गर्भपिंड तैयार होता है, सारी इंद्रियां तैयार हो जाती हैं शरीर में। तो आत्मा प्रवेश करती है, वो आत्मा किसको पहले अनुभव में आती है? ब्राह्मणों में कुमार भी हैं, अदर कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं, अदर कुमारियां भी हैं। तो पहले किसको अनुभव में आवेगा कि हाँ शिव ज्ञान सूर्य अब इस वर्ष में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले रहा है? किसको पता चलेगा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? कन्या माताओं को आगे रखते हैं। कन्या माताओं के हाथ में सारी चाबी देते हैं। तो कन्याओं को पहले पता चलेगा या माताओं को पहले पता चलेगा? कुछ कहेगा माताओं को पहले पता चलेगा, माताओं के गर्भ में तो बच्चा आएगा ना, माताओं के लिए तो शिव बालक है।
तो उन्हीं को पहले पता चलेगा।
परंतु ब्राह्मणों की दुनिया में कन्याएं भी तो हैं कि सिर्फ माता है, कन्याएं भी हैं माताएं भी हैं। लेकिन एक बात बता दी, इशारा दे दिया, कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं। कन्याओं को माता कैसे बना देता हूं? कन्याएं जब सरेंडर होती है और सर्व संबंध बाप के साथ जुड़ती हैं तो माता भी बनेगी कि नहीं है? बनती है तो माता बन गई, और माता है अपवित्र थी ब्राह्मण बन गई तो नंबर बार जितना पवित्रता को धारण करेगी, मनसा वाचा के मान है तो उतनी ही पवित्र कन्या बनेगी। कन्या तो पवित्र होती है ना। तो बोला पहले पहचान किसको होगी के इस साकार दुनिया में वो ज्ञान सूर्य शिव जो निराकार है वो जन्म ले चुका माताओं के बुद्ध रूपी गर्भ पेट में। बुद्ध रूपी पेट होता है ना, तो माताओं को चुरपुर का अनुभव होता है। तो पहले कन्याओं को अनुभव होगा या माताओं को अनुभव होगा? ज्यादा गहराई से कौन पकड़ेंगे है? अच्छा, नई दुनिया में माताएं और कन्याएं, कोई मुख्य माता भी होगी या नहीं होगी? कन्याओं में भी कोई मुख्य कन्या होगी, यादगार भी है। अगर कुमारी कुमारी कन्या यादगार मंदिर बने हैं ना, कन्याकुमारी का मंदिर नहीं है, है? तो पवित्र बुद्धि ज्यादा किसकी होती है? माताओं की पवित्र बुद्धि कहें, जो पहले माताएं थी बाद में उनको टाइटल मिला क्योंकि बाप मिल गया, पवित्र रहने लगी, कन्या की तरह पवित्र हो गई इस नए जन्म में। लेकिन शरीर भी तो साथ है ना, लेकिन कन्याओं का शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी, उस हिसाब से पवित्रता के हिसाब से पवित्र बुद्धि है। इसका प्रूफ क्या है कि कन्याओं की बुद्धि ज्यादा पवित्र है? प्रूफ है कुछ होगा कि नहीं? प्रूफ है कि एवर प्योर बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कन्याएं ज्यादा सरेंडर होती हैं या माताएं, अगर कुमार या कुमार ज्यादा सरेंडर होते हैं? कौन की किसकी बुद्धि ज्यादा पकड़ती है? ज्ञान सूर्य के ज्ञान को ज्यादा कौन पकड़ता है? प्रैक्टिकल जीवन में पकड़ता है, तन से मन से धन से समय संपत्ति सारा स्वाहा करके, तो देखने में आता है प्रैक्टिकल बातें हैं। कन्याएं ज्यादा ज्यादा तादाद में समर्पित हो जाती है। और ये बात ब्रह्म वाक्य में भी बोली है कि इस दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य बड़े बड़े कहे जाने वाले लोग जब भगवान आते हैं तो महामूर्ख बन जाते हैं क्योंकि बाप को नहीं पहचानते और कन्या पहचान देती तन से धन से मन से पहचान देती है जान देती है कि भगवान बाप आया हुआ है। सारी दुनिया हिला हिला करके तंग हो जाती है परेशान हो जाती है लेकिन उनका बुद्ध रूपी पांव अंगद की तरह डटा रहता है अटल रहता है कोई हिला ही नहीं सकता। तो बताया ये जो 2018 है वो बाप के लिए प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ वर्ष है। सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं बताया है? दुनिया में भी जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तब असली जन्म कहा जाता है या बच्चा जब बाहर आता है सारा संसार जानता है पहचानता है कोई ये नहीं कहता कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं हुआ। पेट में आत्मा आती है बाहर नहीं आती तो सिर्फ कन्या माताओं को पता चलता है दुनिया को पता नहीं चलता। तो देखो श्रेष्ठ वर्ष कहेंगे जब जो इन आंखों से देखे जो इन स्थूल कानों से सुने दो शब्द भी भले सुने तो उनके मुख से अंतरात्मा की ये एवरलास्टिंग आवाज निकले कि ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं सारी दुनिया का बाप इस शशि पर आ गया। तो बताओ पहले बच्चा जब पेट में प्रवेश करता है तब श्रेष्ठ जन्म है कि जब बाहर आता है तब श्रेष्ठ जन्म है जो सारी दुनिया पहचाने कोई न कहे कि नहीं आया है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो है वो तब ही माना जाता है जब साकार में बच्चा दिखाई दे क्योंकि जो जन्म मनाया जाता है जन्मदिन वो साकार का मनाया जाता है या निराकार का जन्मदिन मनाया जाता है। कोई नहीं कहेगा कि निराकार का जन्मदिन मनाया क्योंकि निराकार आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है कोई दूसरा नहीं जानता माता को माताओं के सिवाय इसलिए बोला है तो वो भी श्रेष्ठ वर्ष लेकिन जब चार पांच महीने के बाद जब बाहर बच्चा आता है तब सर्वश्रेष्ठ वर्ष क्योंकि सारी दुनिया के देवात्माएं हों मनुष्यात्माएं हों आसुरी मनुष्यात्माएं हों सब पहचान लेते हैं उस सुप्रीम सोल बाप को कि आ गया। तो ये दुनिया के जगाने का आरंभ है। क्या पहले कौन जाती है? कन्याएं जो माता बन जाती है और माताएं जो पवित्र जीवन जीती हैं और कन्या बन जाती है। तो दुनिया को जगाने का ये वर्ष है और देखें कि कैसे ये वर्ष भी कमाल करके दिखाता है। बी क्यों लगा दिया? कि ये वर्ष भी कमाल करके दिखाने वाला है और आगे जो वर्ष आने वाला है सारी दुनिया मानेगी, मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। जो भी इन आंखों से देखेगा, जो भी कानों से दो शब्द भी सुनेगा, कहेगा भगवान बाप आ गया, सुप्रीम सोल फादर। तो ये वर्ष भी कमाल दिखाने वाला है और जो 40 से 50 वर्ष बताए तुम सूर्यवंशी बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए, वो 50 वर्ष भी जब पूरे होंगे 2027-28 तो वो वर्ष सारी दुनिया के लिए है। कैसा वर्ष? सर्वश्रेष्ठ वर्ष कहा जाएगा। ब्राह्मण जो भी सभी ब्राह्मण हैं, क्या ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मा की औलाद हैं, फॉलोअर हैं, ब्रह्माचारी हैं, ब्रह्मा के आचरण में आचरण करने वाले हैं, वो उमंग उत्साह में हैं कि क्या होगा। और जानते भी हैं कि क्या होगा, अभी तो नई दुनिया का सभी स्वप्न देख रहे कि अभी नया वर्ष है, नई रीति, नई प्रीति। क्या नई प्रीति? क्या मतलब? इस दुनिया में जन्म लेने वाला जो भी बच्चा होता है, बच्ची होती है, पहले माँ से प्रीति होती है, फिर बाप को पहचानता है तो बाप से प्रीति होती है, फिर बचपन में खेल खेलते हैं जिन बच्चों के साथ, संगी सहेलियों के साथ प्रीति होती है, साथियों के साथ। स्कूल में जाते हैं तो टीचर से प्रीति होती है, माने प्रीति बदलती जाती है ना। ऐसे ही जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही गीता का भगवान मान के बैठे थे, उनकी बुद्धि में भी बैठ जाता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल वो गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चे के समान महात्मा बुद्धि है। बच्चा तो कितना सहज बुद्धि वाला होता है, कोमल बुद्धि वाला होता है, तो बच्चा तो दुनिया के रंग राज को नहीं जानता। कृष्ण की भी पूजा बच्चे के रूप में होती है, भगवान समझ करके। तो कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है? फिर वो तो सोना तराव में बंधा हुआ है, जो बंधाए मन है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो कलातीत होना चाहिए, ज्ञान सूर्य जैसे कलातीत है। तो जिन ब्राह्मण बच्चों का ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कृष्ण चंद्र वाली आत्मा के साथ प्रीति थी, वो बदल करके किसके प्रति प्रीति हो जाती है? बाप के प्रति प्रीति हो जाती है। जो सुप्रीम सोल बाप है, सुप्रीम सोल बाप निराकार है। मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के जिस हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है, जिसे सब धर्म के लोग मानते हैं, आदम एडम आदिदेव आदिनाथ, उसमें प्रवेश कर जाता है तो साकार रूप में पाठ बजाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको निराकार का संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है, संग का रंग तो जरूर लगता है। जितना नजदीक होगा उतना जाती संग का रंग लगेगा। तो चित्त की ये रीत है समान बनना। पक्का प्रीति है, 100% प्रीति है तो समान बनकर दिखाए, माना निराकार साकार में रम जाता और वो साकार किस में रम जाता? निराकार में रम जाता। मैं तेरे में समा जाऊं तू मुझ में समा जाए, माने निराकार साकार में समा जाता और साकार निराकार की याद में समा जाता। ये बात ब्रह्मवाक्य की मुरली में भी बोली है। सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो तुम बच्चों को नंबर वार आप समान बना कर जाते हैं। जैसे सुप्रीम सोल बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वैसे बच्चे भी नंबर वार निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं। तो कोई 100% में बनना होगा तो वो हीरो पार्टधारी शिव निराकार बाप समान, सुप्रीम सोल बाप समान निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। इसलिए इसकी यादगार में सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापन किया गया जिसमें हीरा जला हुआ था। हीरा निराकार की यादगार, सिर्फ निराकार की या वो हीरा साकार की यादगार है? साकार को भी अपनी आत्मा है या नहीं? जरूर है, लेकिन वो आत्मा जो पहले बाप के आने से पहले पत्थर बुद्धि थी, वो पारस बुद्धि बन जाती है संग के रंग से। तो बाप समान 100% निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती, नहीं तो जो सुप्रीम सोल बाप है आत्माओं का वो तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। और हीरा क्या होता है? पत्थर होता है या चैतन्य होता है? पत्थर ही तो होता है। शिव बाप कभी पत्थर बनता है? जो उसकी यादगार बनेगी हीरा के रूप में? नहीं, जिस साकार में प्रवेश करता है वो साकार पहले पत्थर बुद्धि, फिर संग के रंग से निराकार बन जाता है। जितना सूक्ष्म बुद्धि निराकार आत्मा बनती है उतनी मनन चिंतन मंथन के विस्तार में जा सकती है। ये मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष है, वृक्ष साकार है तो बीज भी साकार है। वो ही बीज वृक्ष का रूप धारण करता है, फिर उस वृक्ष के परिपूर्ण होने पर पहली पहली बार उसमें जो पहला फल निकलता है उसमें वो बीज फिर से प्रत्यक्ष होकर के बाप समान डिटैच बन जाता है सारे संसार रूपी सृष्टि वृक्ष से। पहले पहले डिटैच जो गीता का महावाक्य है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्जुन से बोला, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से नष्ट हुआ हो जाए तो मनुष्य सृष्टि का वो पहला बीज जो तैयार होता है वो मन बुद्धि से सारे संसार से डिटैच होकर बाप समान जैसे ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा परम पिता है वैसे ही डिटैच होकर रहता है। जैसे जड़ ज्ञान जड़ सूर्य सारे संसार से डिटैच होकर रहता है, कोई भी अटैचमेंट नहीं, ऐसे ही वो साकार भी डिटैच हो जाता है, हर न्यारा और प्यारा बन जाता है सारे संसार के लिए। तो ऐसी आत्मा के लिए जो भी आत्मा इस संसार में है सब प्रीति बुद्धि बन जाती, सब के लिए नई प्रीति रह जाती है बुद्धि में, सब नया नया बदल रहा है ऐसे अनुभव करते हैं। जैसे युग बदल रहा है, क्या कलयुग बदलकर संगम युग होता है, ब्राह्मण की शूटिंग का काल पुरुषोत्तम संगम युग बनता है, पुरुषोत्तम संगम युग भी बदलकर स्वर्णिम युग संगम युग कहा जाता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुष माने आत्माएं इस संसार में प्रत्यक्ष होती है, इसलिए नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। वैसे युग के साथ सभी रीति रिवाज कायदे सब उसी प्रमाण चलते हैं, कोई भी तमो प्रधान रीति रिवाज नहीं, पुराने रीति रिवाज सब खत्म, पुराने कायदे कानून सब खत्म, नई दुनिया के नए कायदे कानून शुरू होते हैं, तो सबको उसी प्रमाण चलना पड़े। तो आज अपने नए संसार में जाने की यही संकल्प करना है, क्योंकि आज का दिन जो नया वर्ष है समाप्ति का वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष 2018 है, नए संसार में जाने की है, वो संकल्प करना है कि नए संसार में जाने के लिए हमें पास तो जरूर होना है, किसे हमें किसने कहा, बाप दादा ने कहा, बाप शिव और आत्मा आत्मा भाई भाई जो भी हैं 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र, उनके बीच में जो हीरो पार्टधारी है आदम, वो कहता है हमें, हमें माने एक या दो या ज्यादा, हमें का मतलब है बहुवचन है, कम से कम दो, नारायण और लक्ष्मी। जैसे कोई बीज होते हैं ना दो दल वाले, पवित्र मार्ग के प्रतीक बीज, ऐसे ही ये दो दल हैं। इशारा किया हमें पास तो होना ही है, तो क्या सिर्फ दो ही पास होंगे? वो तो नहीं सूर्यवंशी दुनिया के विश्व महाराजन विश्व महारानी है, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा भी तो कही जाती है। तो जो भी 108 माला के मणके कहे जाते हैं भारतीय परंपरा में, विजय माला के मणके, जो विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले बच्चे हैं नंबर बार, सभी सूर्यवंशी बच्चों को जो राजयोग सीख रहे हैं, जिस योग में राग भरा हुआ है, और राज की बात बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चा बुद्धि, राज की बात तो वो ही समझते हैं जिन आत्माओं ने शशि रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म लिए। और 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के भी बाप माता बनकर रहे हैं, तो उनको पास तो होना ही है। और दो पास, एक तो इम्तहान पास करना और दूसरा विश्व पिता के पास जाना, स्वभाव से, संस्कारों से, पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ भी एक प्रकार की दौड़ है ना, तो दौड़ में कोई अव्वल नंबर पास पहुंचते हैं, कोई फिर नंबर पास पहुंचते हैं। तो एक तो बाप के समीप पहुंचने की पास, दूसरा इम्तहान पास करने की पास, जो सूर्यवंशियों का इम्तहान है। इसे दुनिया में इम्तहान होते हैं ना, भारत में IAS कहते हैं, क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले PCS हुआ करता था। तो ऊंचे से ऊंचा इम्तहान होता था, वो याद भी है, यादगार चली आ गई, तो वो पास भी मिलनी ही है, क्योंकि आपको पास तो मिलेगी ही। किसको है? आपको, आप किसे कहा जाता है, तुम किसे कहा जाता है, वह किसे कहा जाता है, और यह किसे कहा जाता है? यह माने जो बाजू में बैठते हैं, जैसे शिव बाप की बाजू में ब्रह्मा बैठता है, तो यह हुआ चंद्रवंशी। और तुम या आप कहा, तुम कहा जाता है सन्मुख बैठने वालों को, और वह दूर वाले को कहा जाता है। तो यहां आप शब्द बोला, तुम भी नहीं बोला, क्यों बोला, बोलने वाला कौन बोल रहा है? अरे गुंजार दादी के तन में कौन बोल रहा है? ब्रह्मा किशोर बोल रही है ना। तो ब्रह्मा सोल नई दुनिया में जब सत्युग शुरू होगा तो कृष्ण बच्चे के रूप में पहले पत्ते के रूप में जन्म लेगी ना, तो दूसरी पीढ़ी हुई या फर्स्ट पीढ़ी हुई है? जो चार युग हैं ब्रॉड ड्रामा के, उनमें तो पहला बच्चा है, लेकिन वो भी तो किसी का बच्चा होगा ना, किसी से तो जन्म लेगा ना। ऐसे तो नहीं जैसे बच्चा बुद्धि ब्राह्मण कहते हैं परमधाम से आत्माएं आवेंगी सितारे के रूप में और इस सृष्टि पर बच्चा बन जाएंगे, ऐसे कहीं हो सकता है क्या? ये तो कोई प्रैक्टिकल बात थोड़ी हुई। नहीं, माता के पेट से ही बच्चा पैदा होता है, कृष्ण बच्चा, क्योंकि कृष्ण वाली जो आत्मा है सत्युग में वो अव्वल नंबर कृष्ण बच्चा नहीं कही जा सकती, दो नंबर का बच्चा है। अव्वल नंबर कृष्ण बच्चा तो सूर्यवंशी है, जो सूर्यवंशी कृष्ण है वो शिव बाप की गोद में पल रहा है, वो है पुराने के पुराना, जिससे पुरानी आत्मा कोई भी नहीं, नई से नई आत्मा, पुरानी की पुरानी आत्मा, क्योंकि वो नया न बनता है न पुराना बनता है, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना पहला बच्चा बड़ा बच्चा बनाता है, उसी को अपनी सारी प्रॉपर्टी अखूट ज्ञान भंडार की प्रदान करता है। तो वो हुआ असल में साकार में संगम युगी कृष्ण बच्चा, लेकिन वो संगम युगी पुरुषोत्तम युग का बच्चा है, जहाँ पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं संसार की प्रत्यक्ष होती है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है। तो बताया आपको वो पास मिलेगी, चैतन्य ज्ञान सूर्य बाप के पास जाने की, जो चैतन्य ज्ञान सूर्य साकार में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच में एक ही ज्ञान सूर्य है, जिसे शिव बाबा कहकर के लोग पुकारते हैं, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है, जो सत्युग में भी द्वापर में भी त्रेता में भी कलयुग में भी और चार युगों के समाप्त होने पर भी सृष्टि पर कायम रहता है। तो उसे गीता में सूर्य कहा है, जो निराकार भगवान ज्ञान सूर्य शिव बाप निराकार आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को जो सृष्टि का साकार सृष्टि का ज्ञान सूर्य है, ज्ञान की रोशनी सारे संसार को प्रदान करने वाला है, उस साकार ज्ञान सूर्य को ये ज्ञान देता हूं पहले पहले, तो उसके पास जो पहुंचने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं वो नंबरवार हैं। तो ये है अव्वल नंबर पास होना। क्या चैतन्य ज्ञान सूर्य सातार सूर्य के पास नजदीक में पार्ट बजाने वाले बच्चे नंबरवार। और इस पास के साथ ये भी बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने को किसी भी रीति से क्या पास जरूर करे। किसी भी रीति से माने दुनिया में जितनी भी रीतियां होती हैं, जितनी भी प्रीति होती है, उन सब प्रकार की प्रीतियों में कौन सा संबंध है जो सबसे नजदीकी होता है? ऐसा नजदीकी संबंध है कि मरते समय वो संबंध ही याद आ जाता है। पति मरता है तो पत्नी की याद में मरता है, स्त्री चोली की याद में मरता है,
तो अंतमति सुगति स्त्री को स्त्री का जन्म ले लेता है।
अंत समय में स्त्री मरती है तो सारा जीवन जिससे सुख लिया है पति से वो पति का चोला याद आ जाता है। तो अगला जन्म अंतमति सुगति के अनुसार कौन सा मिलता है? वही दिन मिलेगा जिसका सारा जीवन याद किया, अंत समय भी याद आ गया, पुरुष चूड़ा मिल जाता है। तो वो संबंध कौन सा है जो बहुत समीप का संबंध है? उससे ज्यादा समीप का संबंध और कोई होता ही नहीं। वो है साजन सजनी का संबंध। क्या उसका नाम ही है साजन, सहजन। सह माने साथ, साजन माने सहित। कौन सा जन? माने मनुष्य, मनुष्य के साथ का जन। जरूर कोई मनुष्य होता है जिसकी याद रहती है अंत समय में विशेष। तो किसी भी रीति से, चाहे उस संबंध से प्रीति से, चाहे कोई दूसरे संबंध से, बाप बच्चे का भी संबंध होता है, बाप बेटी का भी संबंध होता है, भाई बहन का भी संबंध होता है, तो किसी भी संबंध की प्रीति से पास जरूर करें, फेल ना हो जाए। कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है के जन्म मिला है और शादी हुई, जिस पति से शादी होती है वो पति पहले ही शादी किया हुआ होता है, तो दूसरी पत्नी बन गई ना, छोटी पत्नी बनी या बड़ी पत्नी बनी? परिवार में छोटी माता बनी या बड़ी माता बनी? कहेंगे छोटी माता बनी। तो जब बड़ी माता से संबंध संपर्क में व्यवहार में रहना पड़े तो फिर अपन को छोटी बहन मान लेना चाहिए ना। तो ये रीति बदल गई ना। तो बताया कोई भी रीति से, कोई भी प्रीति से पास जरूर करें, फेल ना हो जाए। समय पास करने का है। क्या दूसरी पत्नी भी बने तो पहली पत्नी का सामना ना करें, क्या सामना करेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो झगड़ेंगे तो काम बिगड़ेगा तो फिर दूर हो जाएंगे। तो नजदीक रहने की बात है, इसके लिए अभी अपना भविष्य चेक करो। भविष्य का आधार है वर्तमान संगम युगी शूटिंग का कार्य, और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो कि भविष्य में हमें जो प्राप्ति होनी है उसका आधार जो अभी पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग का समय है वो कैसा जा रहा है। ये संगम युग मौजों के युग में बीत रहा है या रोने का युग बन रहा है, दुखी होने का युग है या सुख सागर के बच्चे का सुखी होने का समय है। जैसी शूटिंग करेंगे वैसे ही बड़ा ड्रामा वह प्राप्ति होगी। तो पास करना है अर्थात सब कुछ होते हुए भी सब प्रकार की परिस्थितियां कैसी भी ना आ जाए, कैसी भी क्यों ना आ जाए, भविष्य का जो भविष्य है उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करें। क्या कहा? भविष्य का जो भविष्य है, माने संगम युग में भी तो भविष्य पड़ा है ना, तो मौजों का बीतना चाहिए हैं कि रोने का बीतना चाहिए? मौजों का बीतना चाहिए। यहां भविष्य के आने वाले समय में मौज में रहेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी मौज में ही रहेंगे। तो ये संगम युग का जो भविष्य है उसका जो ब्रॉड ड्रामा में भविष्य बनेगा है ना, उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करें जो यही भविष्य हमारे साथ रहे जन्म जन्मांतर। यहां मौजों का भविष्य संगम युग का बनेगा, कभी भी दुखी ना, विनाश का समय है आने वाला है ना, एटमिक एनर्जी तैयार हो गई है ना।
आज से 36 साल पे 80 साल पहले
न भगवान आया था गर्भ में ही सही, गुप्त में ही सही, आया तो था ना, और न संसार के विनाश के लिए एटमिक एनर्जी ही तैयार हुई थी, क्योंकि नया मकान बनता है शशि रूपी तो पुराने मकान को तो गिराना ही पड़ता है। एक कमरा नए मकान के लिए बनाएंगे तो पुराने मकान को गिराना भी पड़े। स्थापना के साथ साथ, निर्माण के साथ साथ विनाश भी नुदा हुआ है। तो यज्ञ में आज से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी, जो आज में सो अंत में भी होता है। ब्राह्मण की संगम युग दुनिया का समय पक गया तो अब अंत होने वाला है। ये एटमिक एनर्जी घर में खिलौने रखने के लिए नहीं बनी है, अभी तो संसार का विनाश होना ही होना है। ऐसी वेंटिलिटी न बनाए कबूतरों जैसी कि कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है, आई ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अब अंतिम समय है। जैसे सभी धर्म पिताओं के लिए, चाहे वो ब्रह्मा ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा ही क्यों न हो, इस्लामियों का बाप, बौद्धियों का बाप, क्रिश्चियंस का बाप या उनके सहयोगी धर्मों का बाप, कोई भी बाप क्यों न हो, सबके लिए 100 वर्ष का समय अनुदा हुआ था अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। ऐसे ही ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सत्य सनातन धर्म, इसकी स्थापना करने के लिए भी भगवान को इस शक्ति पर नई दुनिया बनाने के लिए, पुरानी दुनिया को भस्म करने के लिए ये 100 साल का ही संगम युग नदा हुआ है। 1936 से शुरुआत होती है और 2036-37 में खेल खड़ा, अर्थात जो भी अणुअणीयांशम अनुरूप ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्माएं हैं उनका विनाश होगा। विनाश आत्मा का नहीं होता है, आत्मा तो अविनाशी है, शरीरों का विनाश होता है। इस मनुष्य शक्ति की सभी 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। अभी ये टाइम पास करने के लिए जो विनाश का टाइम आ रहा है प्रैक्टिकल में, उसमें कौन कितना खुश रहता है। जो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है, खुदा के बंदे कयामत के समय में बड़े खुश रहेंगे, खुदा की बंदगी करने वाले नहीं होंगे तो खुश उतने नहीं रहेंगे। तो ये भविष्य संगम युग पर हमारे साथ रहे और हम सुप्रीम सोल बाप के पास रहे, जो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव आदम को आप समान बनाकर जाता है, शिव समान बनाकर जाता है, जिसकी यादगार शिवलिंग सारी दुनिया में खुदाई में मिली है और भारत में तो खास सबसे जास्ती यादगार मंदिर बने हुए। तो बताया तो सुप्रीम सोल बाप जो साकारी भी है और संगम युग में निराकारी भी है, जिसकी असली यादगार भक्ति मार्ग के सात्विक समय में सोमनाथ मंदिर में बनी थी। साकार लिंग भी था पत्थर का और उसमें हीरो पार्टधारी आत्मा भी थी हीरे के रूप में। हीरा तो बेशकीमती होता है, अव्वल नंबर होता है, जैसे 9 रत्न होते हैं उनमें हीरा ही बेशकीमती होता है। उसकी यादगार है कोहनूर हीरा, वो तो जर हीरा है जो विदेशियों के अंदर में, लेकिन ये चैतन्य हीरा है ये चैतन्य हीरा विदेशी बाप बनकर के आया, मनुष्य शक्ति का बाप है, उसके नजदीक जाना है, पहचानेंगे तब नजदीक जाएंगे ना। आस पास है, नजदीक जाएंगे तो पहचानेंगे, पहचानेंगे तो याद करेंगे। परिवार के नजदीक जाना पड़े कम से कम, तो पहला पास होना है नजदीक जाना, दूसरा पास है जो इम्तहान है पढ़ाई का, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, और जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी वो उतना ही संगम युग में भविष्य में विनाश काल में महान विनाश काल में भी मौज में रहेगा। उसको कहेंगे 100% फुल पास, फिर नंबर वार पास। तो पढ़ाई में भी पास, ये पढ़ाई का इम्तहान भी हो रहा है, और पास एक इम्तहान पास करना, और दूसरा बाप के नजदीक जाना। और जो भी ये विनाश काल का समय आ रहा है सारी दुनिया के लिए, अष्टदेवों को छोड़कर के हाहाकार का समय आ रहा है नंबर वार, उसे विकराल टाइम को पास करना है, मन समय को पास करने की बात है। तो ये सबके मुख से यही निकले, पास नंबर वन, पास नंबर दो, पास नंबर तीन। एक बाप के पास पहुंचे नंबर वाले पहुंचेंगे, दूसरा पढ़ाई जो सुप्रीम सोल बाप पढ़ा रहा है, जो मनुष्यों की पढ़ाई नहीं है, देह अभिमानी मनुष्यों की, देह अभिमानी धर्म पिताओं की पढ़ाई नहीं है, विदेही बाप की पढ़ाई है, ईश्वर बाप की पढ़ाई है, सुप्रीम सोल बाप की पढ़ाई जरूर ऊंचे से ऊंच पढ़ाई होगी, एक सदगुरु निराकार की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में पास होना है। अब देखते हैं कौन किस नंबर में पास होते हैं। तो बताया सभी की शक्लें बताई रही है, क्या सभी की शक्लें टाइम टू टाइम बताती रहती हैं कि अभी पुरुषार्थ तो किया है, पर वो पुरुषार्थ पीछे किया है वा नहीं किया है, पीछे माने पास्ट में पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है, वो तो बात और है, लेकिन सभी अभी इस समय सभी ने फुल पास की एम रखी है, क्या तीनों प्रकार के पास में फुल पास। किसने रखी है? सभी ने। सभी ने क्या 500-700 करोड़ बने? अरे 500-700 करोड़ तो नंबर वार ग्रहों के रहवासी हैं, 9 ग्रह हैं ना मुख्य, तो 9 प्रकार की कुरियां हैं ब्राह्मणों की, जो संगत भी शूटिंग काल में तैयार होती है। तो सभी ने जो लक्ष्य रखा है खून पास करने का अहम ऑब्जेक्ट रखा है सभी ने। कौन सभी ने? सूर्यवंशियों ने या दूसरे सूर्यवंशियों ने लक्ष्य रखा है? सब तो नहीं रखेंगे, उनकी शक्लें बताई रही हैं, सदा खुशनुमा शक्लें नहीं रहती हैं। आप सबने फुल पास करने की एम रखी है और वो होगी भी, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्माचारी है, कर्म इंद्रियों के आचरण में ब्रह्मा के समान आचरण करने वाले हैं। तो ब्राह्मणों को पहली पहली सौगात यही है, क्या? फुल पास। एक प्रकार का फुल पास या तीनों प्रकार का फुल पास? तीनों प्रकार का फुल पास। और सारी सभा के अंदर यही उमंग है। कौन सी सारी सभा? चंद्रवंशियों की, इस्लाम वंशियों की, बौद्ध वंशियों की, क्रिश्चियन, सभी धर्मों की आत्मा है। तो अंतिम जन्म में यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में चितर के आई हुई है, पढ़ाई पढ़ रही है। तो सभी ने फुल पास की एम ऑब्जेक्ट रखी है। किसने रखी है? कौन से वंश वालों ने रखी होगी? जो नई दुनिया में पहले भी गए थे पूर्व कल्प में, वो ही अभी भी एम ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं कि हमें बाप के समीप जाना है, पढ़ाई में पास होकर दिखाना है, और जो भी कठिन समय आने वाला है महाविनाश के समय में, वो समय बड़े मौज में पास करना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख का नाम निशान ना आए, यही उमंग है। तो अब जल्दी जल्दी पास हो जाएं। तो कितनी खुशी होगी?
जल्दी जल्दी क्यों
है? अरे सुख का समय जल्दी बीतता है या दुख का समय जल्दी बीतता है? क्या होता है? सुख का समय जल्दी बीत जाता है ऐसे लगता है, और दुख का समय बीतता ही नहीं, क्षण क्षण गुजारना मुश्किल होता है। गीत भी गाते हैं, समय तू जल्दी जल्दी भी, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी भी। तो बताया जो समय आने वाला है कठिन समय, वो जल्दी जल्दी खुशी में पार हो जाए, तो कितनी खुशी होगी, सबको कितनी खुशी होगी है? आप सारी सभा को खुशी होगी कि दूसरी कुलियों के ब्राह्मणों को खुशी होगी? आप सूर्यवंशी तो अव्वल नंबर पूरी के हैं ना, सभी खुश हैं कि अभी हम परिवर्तन होने वाले हैं। क्या ये है ही नया वर्ष परिवर्तन होने का? फिर निर्वैर भाई ने कहा, बाबा आपको भारत देश की सभी सेंटर्स पर किसको किसको इंट्रोड्यूस किया? बाबा को। और ब्रह्मवाक्य मुरली में बता दिया बाबा किसे कहा जाता है? बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को, बाप का बाप। अर्थात इस दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं उन सबका बाप आदम, मनुष्य शक्ति का बीज जिसमें निराकार सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है। उसके लिए निर्वैर भाई ने बोला आपको देश के सभी सेंटर्स पर और विदेश के भी सभी सेंटर्स पर भाई बहने देख भी रहे हैं। क्या अव्यक्त होकर देख रहे हैं कि व्यक्ताओं से देख रहे हैं सभी है? व्यक्ता होंगे तो तभी देखेंगे जब साकार में इस सच रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल बाप किसी साकार कण के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, जो संसार में प्रसिद्ध है, पुराणों में प्रसिद्ध है कि शिव सुप्रीम सोल जो निराकार आत्मा ही है, उसको अपना साकार शरीर होता ही नहीं। वो निराकार बाप इन आंखों से तो देखने में नहीं आता। जब साकार मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान की आंखों से कोई समझ सकता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र है बुद्ध रूपी नेत्र, तीसरा नेत्र। तो सभी सेंटर्स पर भाई बहन देख भी रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? कौन से चैनल के द्वारा है? पीस ऑफ माइंड के चैनल के द्वारा, जिनके मन में शांति भरी हुई है, शांति देवा की दी हुई। वो शांति देवा है देवा का, शांति देने वाला निराकार ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं देता। वो अकूट ज्ञान का भंडार है, न शांति देता है, न सुख देता है, न दुख देता है। तो बताया कौन सा चैनल? बताया ईस ऑफ माइंड। शांति देवा जो शांति देता है, निराकार बाप की याद में सदैव रहकर उस चैनल के द्वारा तथा अन्य चैनल्स के द्वारा जो उतनी शांति देने वाले नहीं है, अशांति भी पैदा कर देते हैं। पांच उंगलियां एक जैसी तो होती थी, कोई छोटी कोई बड़ी। तो उन सभी चैनल्स के द्वारा सुन भी रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो सारे देश विदेश के भाई बहनों के लिए कोई दो शब्द नए वर्ष के लिए जैसे आप बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, जो आपको सारे विश्व के भाई बहनों के हिसाब से प्रेरणा आए, सुनना चाहते हैं, बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं आपको और इंतजार कर रहे हैं आज हमारे लिए बाबा क्या कहेंगे। तो अब तक बाप दादा ने बोला गुलजार दादी के मुख से, सभी अपने को क्या समझते हैं है? सभी जो भी ब्राह्मण हैं, इस संगमी भी जन्म में लास्ट जन्म में कोई भी धर्म से कन्वर्ट होकर के आए हैं और कोई भी कुरी के ब्राह्मण हैं, सभी अपने को क्या समझते हैं? सूर्यवंशी समझते हैं, चंद्रवंशी समझते हैं, इब्राहिम के इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी या उनके सहयोगी धर्म के वंशी समझते हैं, समझते हैं कि नई दुनिया जो बन रही है, दिल्ली में जो नया राज्य स्थापन हो रहा है, उस पर हमारा अधिकार तो है ही, समझते हैं? ऐसे तो नहीं समझते पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, ऐसे कौन समझेंगे? पता नहीं, ईश्वरीय ज्ञान जिन्होंने पूरा धारण किया होगा उनको ऐसा संकल्प आएगा क्या होगा, कैसा होगा, या क्वेश्चन मार्क से परे होंगे? क्वेश्चन मार्क अच्छा होता है या फुल स्टॉप अच्छा होता है? आत्मा ज्योति बिंदु की याद करें तो फुल स्टॉप, आत्माओं के ज्योति बिंदु बाप शिव को याद करें पहचान कर कि किस साकार मनुष्य तन में वो बाप प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ये विचार भले चलें क्या होगा कैसे होगा, लेकिन इस तरह के विचारों में क्यों क्या कैसे के संकल्पों में क्वेश्चन मार्क में टिक न जाएं, स्थिर न हो जाएं, अगर ठहर जाएंगे तो क्या होगा है? क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन मार्क्स में ठहर जाएंगे तो माया, जो भूत प्रेतों की माया है ना, रावण संप्रदाय, वो भूत प्रेतानी संकल्प निगेटिव, संकल्प निगेटिव आत्माएं वाइब्रेशन को पकड़ती हैं, वो क्यों क्या कैसे कि तुम्हारे वाइब्रेशन को पकड़ लेंगी और तुम्हारे में प्रवेश करके और ही ज्यादा क्यों क्या कैसे के संकल्प उत्पन्न कर देंगे। तो ऐसे संकल्प में ठहर नहीं जाओ, ये ठहरना अच्छा नहीं है। क्या तो क्या करें? जो बताया बाप को याद करो, क्या विधर्मी धर्म पिताओं की याद मत, की तरह याद मत करो जो निराकार को याद करते हैं, नहीं, जो निराकार इस साकार सृष्टि में साकार में आता है और उस साकार मनुष्य तन में आकर के उस साकारी हीरो पाठधारी को अपनी ज्ञान की अकूट भंडार की सारी संपत्ति देकर जाता है, तो क्यों क्या कैसे के संकल्प में वो ठहरेगा या मन चिंतन मंथन करके निराकरण निकाल लेगा? निराकरण निकालेगा ना, ठहर जाएगा। या जो मनन चिंतन मंथन है चालू रहेगा, आकारी स्टेज में टिकेगा और आकारी से निराकारी बनेगा। जो बताया कि तुम बच्चों को घड़ी घड़ी ही प्रैक्टिस करनी, अभी अभी साकारी है, अभी अभी निराकारी है, अभी अभी आकारी। आकारी का मतलब ये नहीं है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल की तरह सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बन जाए, नहीं। सूक्ष्म शरीरधारी तो वो बनते हैं जिनकी आकारें बहुत होती है। तुम सूर्यवंशी बच्चे अकाले मौत पाने वाले नहीं हो, अकाले मौत उनकी होती है जो जन्म जन्मांतर पाप करते हैं। संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान नहीं लेते, जो ईश्वर आकर के पाप और पुण्य की व्याख्या करता है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता है, उस गति के बारे में पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते तो वो निगेटिव संकल्पों में ठहर जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो हमको राज्यभाव लेना है, राजयोग सीख रहे हैं, राजयोग सिवाय एक बाप के और कोई सिखाई नहीं सकता। जिस योग में राग भरा हुआ है, राज की बातें बालिक समझते हैं, नाबालिग समझते हैं या किशोर समझते हैं या शिशु समझते हैं, ज्यादा कौन समझते हैं, गहराई से कौन समझते हैं। कृष्ण तो बच्चा है जो गीता का भगवान बना दिया, वो तो बच्चा बुद्धि है। ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे तो 84 जन्म से भी ऊंची स्टेज में चले जाते हैं। तो अभी तो तुमको राजभाग लेना है, नई सच्ची का राजभाग लेना है। ऐसे नहीं सच की दुनिया पलट जाए। ब्रॉड ड्रामा का पहला सीन गुजर जाए तो त्रेता में जाकर के राजभाग लेंगे, द्वापर मिलेंगे, कलयुग मिलेंगे, नहीं। नई पे नई दुनिया का राजभाग लेना है, जिस नई दुनिया में ऊंचे से ऊंचा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने वाला बनना है। यह अतीन्द्रिय सुख तुम बच्चे जो डायरेक्ट ईश्वर बाप के साथ सन्मुख बैठ करके लेते हो, वो भाग्य और धर्मवंशियों को प्राप्त नहीं होता। लेकिन पहले अपने पर राज्य करना है, स्व पर राज्य करना है। स्व माने आत्मा, आत्म की स्थिति कंट्रोल में रहती है। आत्मा जो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु की स्थिति में कितनी देर टिकते हैं, कितनी देर आत्मा स्थिर रहती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा घड़ी घड़ी भागती तो रहती नहीं। तो बताया राज्य अपने पर पहले करना है, अपनी इंद्रियों पर राज्य करना है। इंद्रियों में भी सबसे बड़ी इंद्रिय है मन, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना है। जिनका मन वश में हो जाता है, जो गायन है मन जीते जगत जी, तो उनका दूसरों पर तो राज्य रहता ही है। दूसरों माने सभी धर्म वालों के ऊपर राज्य करेंगे, उनको कोई भी नहीं हरा सकता जन्म जन्मांतर। वो तो प्रसिद्ध हो रही है क्या? कौन प्रसिद्ध हो रहे हैं? ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में भी वो ग्रुप प्रसिद्ध हो रहा है, उनका मुखिया प्रसिद्ध हो रहा है, जैसा बाप वैसे बच्चे भी प्रसिद्ध होने हैं। क्या प्रसिद्धि? नारायण के लिए जो गायन है पौराणिक कथाओं में, उनकी कभी भी हार नहीं हुई। जो नर से डायरेक्ट उसी जन्म में नारायण बनता है, किसी भी युद्ध में जीत ही जीत होती है। वो है ही विजय विहार में विजय प्राप्त करने वाला, विजय विहार में विहार करने वाला। जैसे बिहारियों के लिए बोला ना, क्या बोला? जो बिहारी हैं वो सदा बहार मौसम लाने वाले हैं। ऐसे ही ये सूर्यवंशी प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्वदर्शन चक्र है ना, आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन चक्र है ना, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आप सूर्यवंशी आत्माओं ने ही सच रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में 84 जन्म लिए हैं पूरे, और धर्म वालों ने पूरे 84 जन्म नहीं लिए। 84 का चक्र आपके लिए गाया हुआ है, और धर्म वाले कम जन्म लेते हैं तो कम सुख भोगते हैं। आप पूरे चक्र में चक्कर लगाने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हो, विष्णुवंशी हो, इसलिए आप पूरा सुख भोगते हैं। 16 कला संपूर्ण ही नहीं, कलातीत सुख भोगते हैं। तो आपका सुदर्शन चक्र भी बहुत बड़ा है, और सब प्रश्न इसी विषय पर हैं। क्या दुनिया में जितने भी प्रश्न उठ खड़े होते हैं वो कौन से विषय पर है? मैं आत्मा क्या हूं? मैं आत्मा से शिल्पी रंगमंच कितने जन्म लेने वाला हूं? किस धर्म विशेष में पार्ट बजाने वाला हूं? कहीं किसी धर्मों में कन्वर्ट होने वाला भारतीय तो नहीं हूं? क्योंकि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के दुर्गति पाई। कन्वर्ट होते हैं उन्हीं के लिए गीता में कहा है, स्वधर्म ही निधान से परधर्म वो भयावह। जो आत्मा का धर्म है ना, वो आत्मा के बारे में सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नहीं बता सकता। मनुष्य तो बता ही नहीं सकते, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का प्रयोग करता है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। जो मन को कंट्रोल कर दे, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर कर दे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, तो उसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा। क्योंकि तो भगवान हो गया, भगवान को संकल्प विकल्प चलाने की दरकार है? भगवान तो संकल्प विकल्पों से परे है, वो तो त्रिकालदर्शी है, उसे संकल्प विकल्प चलाने की क्या दरकार? संकल्प विकल्प तो वो चलाते हैं जो अपने आत्मा के पूरे 84 चक्र को नहीं जानते हैं। तो देखो ये सुदर्शन चक्र का जो विषय है, इसी पर सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। दूसरी कोई योजना सामने है क्या तुम्हारी? जैसे अभी का राज्य है, संगम युग का राज्य, वैसे अभी इससे भी मजबूत राज्य आपका आ रहा है। अभी तो हिलते डुलते रहते हो, अभी आने वाला जो सूर्यवंशियों का राज्य है उसमें स्थिर हो जाएंगे नंबर वार। हरेक उसको भविष्य को देख खुश हुआ है और आगे की प्रेरणा ले रहे हैं। किसको देख, किससे प्रेरणा ले रहे हैं? जिसका राज्य इस शक्ति रूपी रंगमंच पर सबसे मजबूत राज्य है, सबसे मजबूत राजधानी। जो राजधानी सारे विश्व में विख्यात है, सारे विश्व की हर धर्म की आत्मा है उस राजधानी में लगभग समान रूप से रही पड़ी है। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्ध भी, उनकी सहयोगी धर्म वाले भी तो हैं ही। तो एक ही दुनिया का वो शहर है जिस राजधानी में सभी धर्म के लोग समान वंश से समान रूप से रहे हुए और सभी धर्म वालों ने उस शहर में मनमाने तरीके से राजाई की है, खून की नदियां भी बहाई हैं, लेकिन उनका राज्य मजबूत राज्य नहीं रहा। आपका तो राज्य सबसे मजबूत राज्य, सबसे मजबूत राजधानी आ रही है। हरेक उसके भविष्य को देख, किसके भविष्य को देख? मजबूत राजधानी के भविष्य को देख, मजबूत राजधानी के राजा के भविष्य को देख, जो विश्व पिता कहा जाता है। सब कोई खुश हो जाता है, सारी दुनिया में हर आत्मा को खुश होना है और आगे की प्रेरणा हर मनुष्य आत्मा लेगी, ले रही है। बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश हैं और समझते हैं कि बहुत कुछ मिल गया है। कौन से बच्चों को देखकर बहुत खुश हैं? हैं? बाप दादा भी खुश हैं, भी क्यों लगा दिया? हैं? भी इसलिए लगा दिया कि बोलने वाली आत्मा दादा लेसराज ब्रह्मा की आत्मा तो खुश है, जितना समझती है उतना और जितना समझ चुकी है उतना खुश है ही। इसलिए पहले से ही बोल दिया दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, सबको वहां जाना पड़ेगा तुम बच्चों को। तो ये बाप दादा कौन है जो खुश हो रहे हैं? है? वो बाप है आत्माओं का बाप शिव, और जो आत्माओं का बाप शिव जिस आदम बच्चे में प्रवेश करता है, जो सभी मनुष्य मात्र का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, शिव ग्रैंडफादर नहीं है, वो तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसका दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। वो जिस तन में प्रवेश करता है मनुष्य तन में, वो सभी धर्म पिताओं का भी बाप है, क्योंकि उसी बाप से सारी मनुष्य शक्ति को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। ये बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है, और दो ही बेहद के बाप हैं इस मनुष्य सृष्टि में, एक मनुष्यों का बाप आदम एडम, और दूसरा निराकार ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु। तो ऐसे निराकार के बच्चे जो निराकारी स्टेज में टिकने वाले हैं, उनको बहुत कुछ निराकार ज्ञान सागर का अकूट ज्ञान भंडार मिल गया है, और अभी भी मिलना ही है। ओम शांति। महाराष्ट्र जो उनका है, क्या कहा? खास सूर्यवंशी ब्राह्मणों की दुनिया में दो जोन खास हैं। एक है स्थापनाकारी, दिल्ली है स्थापनाकारी, और बंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है विनाशकारी। तो अभी किसका टर्न है सेवा का? इस वर्ष में खास किनको सेवा करनी है? विनाशकारी ग्रुप के लिए बताया महाराष्ट्र जोन, जो महान राष्ट्र कहा जाता है। महान देवता कौन है? महादेव। हर हर बम बम की नगरी है महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई। तो बोला बॉम्बे वालों का भी सेवा का टर्न है। किसका किसका बताया? महाराष्ट्र बॉम्बे का, और तीसरा नाम बताया आंध्रा का भी टर्न है। आंध्रा माने अंधेरे, अंधे की औला कैसे होंगे? अंधे कहानी है ना, ब्राह्मणों की सबने भी दुनिया की ही कहानी है। विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, इस संसार को इसको पार करने के लिए अंधे ने लंगड़े का सहारा लिया, और लंगड़े ने अंधे का सहारा लिया। एग्रीमेंट हो गया दोनों में। क्या एग्रीमेंट हुआ? अंधे ने कहा मैं तुमको सहयोग दूंगी, और लंगड़े ने कहा मैं तुमको सहयोग दूंगा। कैसा सहयोग दूंगा? लंगड़े ने कहा मुझे अपने ऊपर सवार कर लो। क्या कर लो? सवारी कर लो। तो एक देवी दिखाई जाती है भारतीय परंपरा में, सिंहवाहिनी देवी। कौन सी देवी? सिंहवाहिनी देवी। जो लाइन होता है ना उसके ऊपर सवारी करने वाली। तो जो शंकर नामधारी पार्ट है, विनाशकारी पार्ट तो है, लेकिन साथ साथ स्थापना भी तो है। दोनों साथ साथ होते हैं, तो विनाशकारी के साथ कौन चाहिए? स्थापनाकारी भी चाहिए। तो वो है स्थापना में मददगार बनने वाली शिव की शक्तियां। लेकिन वो चंद्रवंश में पैदा होती है, बड़े से बड़ी शक्ति जिसको चंद्रवंशी राधा कहा जाता है। राधा का अर्थ है राम को धारण करने वाली, जीवन में राम को जिसने धारण किया, एक जन्म के जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर के जीवन में धारण किया। और कोई भी आत्मा इस शिरूपी रंगमंच पर नहीं है जो जन्म जन्मांतर शंकर को वर्ण कर पाए। राधा कहो पार्वती कहो, अंधी है ना, चंद्रवंश में जन्म लेती है ना, चंद्रमा को अंधारा भी बन जाता है, कलाएं बढ़ते बढ़ते उजाला भी बन जाता है। तो चंद्रमा जब अंधा हो जाता है तो उस अंधे की बच्ची है, सदा सोजरे की बच्ची नहीं है। तो गायन है अंधे की औलाद, अंधे उनमें ज्ञान आता ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो अंधा ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र की आत्मा ज्ञान के मर्म को समझती ही नहीं, बच्चा बुद्धि होने के कारण। लेकिन है इनोसेंट बच्चा, बच्चा तो महात्मा होता है ना, तो वो महात्मा बच्चा बहुत प्यारा होता है और माताओं को तो बहुत प्यारा लगता है। माताएं तो कृष्ण के ऊपर नाम लेते ही न्योछावर हो जाती है। तो उसको जन्म देने वाला जो बाप है वो कलातीत है, ज्ञान सूर्य। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है ना। बहुत ज्यादा सूर्य की बात यहां नहीं हो रही है, यहां बेहद का चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है और बेहद का ज्ञान सूर्य है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो वो बेहद का ज्ञान सूर्य जो है वो महान राष्ट्र को धारण करता है। क्योंकि जैसे आज की दुनिया में अमेरिका महाशक्ति माना जाता है, महान राष्ट्र समझते हैं, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, ऐसे ही जो आने वाली दुनिया है उस दुनिया में वो महान राष्ट्रधारी होगा। बाकी राष्ट्र जो हैं वो महान नहीं कहे जाएंगे, राष्ट्र तो होंगे छोटे बड़े लेकिन वो महान राष्ट्र, उसकी जौन में पलने वाले महाराष्ट्रियन और उनकी राजधानी क्या क्या बताया, बॉम्बे, हर हर बम बम की राजधानी क्या, पुरानी दुनिया का विनाश पहले होगा कि नई दुनिया पहले प्रत्यक्ष होगी? ऐसे तो होता ही नहीं, पहले पुराने मकान का विनाश गिनाना जरूर है, पुरानी परंपराओं का विनाश, पुराने संबंधों का विनाश। पुराने जितने भी संबंध हैं वो सब देहभान के ऊपर आधारित, देह के संबंध, देह को प्रेफरेंस देने वाले। जो नई दुनिया होगी उसमें देवताएं आत्म की स्थिति वाले होंगे, ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में रहेंगे, देह की स्मृति में नहीं रहेंगे, इसलिए उनका सुखी जीवन होगा। स्वचिंतन करने वाले हैं, स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है, बाकी पर है ये शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच जड़ तत्व जो हैं, वो जड़त्वमयी होने के कारण पर हैं प्रकृति, कि रूप दो चीजें हैं दुनिया में मुख्य, एक आत्मा और एक प्रकृति। प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली और आत्मा चैतन्य। जब आत्मा चैतन्य सात्विक बनती है, स्वचिंतन में स्थिर रहने वाली, आत्म की स्थिति में स्थिर होने वाली, जो गीता में कहा स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह, स्वधर्म बहुत श्रेष्ठ है। परधर्म अर्थात प्रकृति का धर्म, प्रकृति की धारणा बहुत भय पैदा करने वाली। आज दुनिया में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भौतिकवादी बन गए, पंचभूतों का आलोड़न कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टरों के बल से इस दुनिया में बीमारियां खत्म हो रही और ही नई नई बीमारियां बढ़ती जाती हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। और न वैज्ञानिकों के बल पर इस दुनिया में सुख शांति बढ़ रही है, सब अशांत हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, क्या होने वाला है। इतनी एटमिक एनर्जी तैयार हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध में तो छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां विस्फोट हुई थी, उस समय कितना हाहाकार हो गया था विश्व। उस समय के घायल आज भी हॉस्पिटल्स में पड़े पड़े हाय हाय कर रहे हैं, उनकी हाय हाय देखी नहीं जाती किसी से। अभी तो हजारों हजार वाट के एटम बम बने पड़े हैं, एक देश में नहीं अनेक देशों में। परंतु किसी में ताकत नहीं है, वैज्ञानिकों में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि अपनी ही बनाई हुई रचना एटम बमों को विस्फोट कर सकें, क्योंकि जानते हैं हम विस्फोट करेंगे तो दूसरे राष्ट्र भी विस्फोट करेंगे और विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और विश्व युद्ध आने पर जब सभी एटमिक एनर्जी से विश्व युद्ध में कूद पड़ेंगे तो ये सारी दुनिया भस्म होने वाली है, तो हम भी भस्म हो जाएंगे। तो आत्मविश्वास साफ पर जगमगा रहा है। तो सच्चे रूपी रंगमंच पर ऐसी आत्मा चाहिए जिसके आत्मविश्वास को कोई जगा न सके। और वो भारतीय पुराणों में, भारतीय परंपरा में गाया हुआ है, एक ही मनुष्य मात्र है जो सृष्टि विनाश हो जाती है लेकिन उसका विनाश नहीं होता। वो महाकाल गाया हुआ है, कौन कहां का महाकाल प्रसिद्ध है अरे इस भारतवर्ष में एक शहर है जहां महाकाल का मंदिर है, वो कालों का काल है, उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। महाकाल महाविनाश होता है तो भी वो जिंदा रहता है। जो बहन है शंकर का कोई मात पिता नहीं, उसको कोई जन्म देने वाला नहीं, उसी का भी मृत्यु नहीं होती। महामृत्यु भले हो जाए लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, वो एक ही शख्सियत है इस संसार में जिसका शरीर नष्ट नहीं होता। और उसी को गीता में कहा गया है अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने मूरत तो है, अमूर्त नहीं है, मूर्त माने साकार तो है, निराकार नहीं है, माने शरीरधारी तो है, लेकिन उसके शरीर में यादगार दिखाई गई है कि इंद्रियां नहीं दिखाई देती, जो यादगार शिवलिंग महा शिवालयों में दिखाया जाता है। शिवलिंग में इंद्रियां नहीं दिखाई देती, शिवलिंग बड़ा रूप है शरीर। सोमनाथ मंदिर में भी शिवलिंग था आदि रूप आदिकाल में, भक्ति मार्ग का आदिकाल था ना सात्विक, उसमें सही यादगार थी, साकार लिंग भी था, साकार शरीर की यादगार, और उसमें रहने वाली निराकार आत्मा भी थी जो हीरो पार्टधारी है, जो पत्थर बुद्धि भी बनती है और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि भी बनती है। जिस हीरे की यादगार आज भी विदेश में रखी हुई है, जिसका नाम है कोहिनूर होरा हीरा। बताओ कौन है वो नूर? है संसार का नूर है। ऐसी तो निराकार भगवान की दो आंखें हैं, दो ही बच्चे हैं इस संसार में। जो उस निराकार भगवान की आंखें नूर हैं, उन आंखों के द्वारा इस संसार को देखता है राम और कृष्ण। एक राइटियस है, एक लेफ्टिस्ट भी है, एक सिर्फ राइटियस देखती है, लेफ्टिस्ट देखती ही नहीं। जिसका महाभारत में यादगार है, अपने परिवार में अपने बच्चों को राइट ही राइट समझता था, उसका नाम था धृतराष्ट्र। सारे राष्ट्र को धा धर के बैठ गया, थी पांडु राजा की संपत्ति। पांडु राजा के बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन एकड़ी करके धारण करके बैठ गया, तो वो है लेफ्टिस्ट। और राइटियस वो है जो राइटियस पार्ट बजाता है, उसका नाम महाभारत में पड़ता है युद्ध स्थिर। विश्व युद्ध क्यों न हो जाए, तृतीय चतुर्थ विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध महाभारी महाभारत विनाश, और चतुर्थ विश्व युद्ध है एटमिक एनर्जी का विनाश, लेकिन वो स्थिर रहता है। वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा होगा, इस चक्र में नहीं आता, क्योंकि वो अखूट ज्ञान का भंडार शिव का बड़ा बच्चा है। हिस्ट्री में बड़े बच्चे को ही राजाई मिलती रही है, वो बच्चा भविष्य को देख करके जितना खुश रहता है, उतना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी बच्चा उतना खुश महाविनाश काल में नहीं रह सकता। तो उस बच्चे से जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, आत्माओं का बाप नहीं है लेकिन साकार मनुष्य शक्ति का बाप है, उससे बच्चों को प्रेरणा लेनी है। ऐसे तो सूर्यवंशी तुम बच्चों को बहुत कुछ मिल गया है और मिलना ही है।
अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा सेवा का कर्ण महाराष्ट्र जोन का है।
15,000 महाराष्ट्र वाले आए, अच्छा ही है। कितने आए हैं है? स्थापनाकारी दिल्ली, नॉर्थ इंडियन, और साउथ इंडिया का जो मुख्य शहर है, साउथ इंडिया की मुख्य राजधानी माया की नगरी कही जाती है, बॉम्बे। बॉम्बे है विनाशकारी बताया, दिल्ली है स्थापनाकारी। तो दिल्ली के नहीं बताए, कहां के बताए 15,000, कहां के बताए, बताए महाराष्ट्र जोन के, विनाशकारी जोन के 15,000 आए। कौन आए? आए हैं बाप दादा जिनको देख रहे हैं सामने, कौन है विनाशकारी, कितने हैं स्थापनाकारी, कितने और कहां हैं? सूर्यवंशियों में है कि दूसरे वंशियों में? ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी हैं, जो पहले भी घोषणा की थी आज से 40 वर्ष पहले। क्या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में घोषणा की गई थी, पुरानी ब्राह्मणों की भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और नई श्रेष्ठाचारी दुनिया का आरंभ होने वाला है, वो मानसिक बात थी, संकल्पों की बात थी। अभी तो प्रैक्टिकल में होना है, तो प्रैक्टिकल में ऐसे विनाशकारियों की संगठन की बात की, विनाश की सेवा करने वाले बच्चे हैं जिनकी संख्या कितनी बताई, 15,000। स्थापनाकारी भी तो इतने ही होंगे, स्थापना के साथ साथ विनाश भी होता है ना, तो 15,000 स्थापनाकारी और 15,000 विनाशकारी, टोटल 25,000-30,000 हुए स्थापनाकारी और विनाशकारी, वो सूर्यवंशी बच्चे आए हुए। अच्छा, उठ के खड़े नहीं होना है सबको, केवल हाथ हिलाइए, महाराष्ट्र वाले हाथ बेटा हिलाओ, क्यों केवल महाराष्ट्र वाले हाथ क्यों हिलाए, क्योंकि उन्हीं को वो सेवा का कार्य करना है, ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश का कार्य दिल्ली वालों को नहीं करना है। क्या दिल्ली वालों को क्या करना है, क्या करना है, स्थापना करनी है। दिल्ली है स्थापनाकारी, महा बंबई है विनाशकारी, और सभी उमंग उत्साह में महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र बॉम्बे। और तेलंगाना, कौन से आंगन, जिनके आंगन में तेल भरा हुआ है, क्या कहा, आज की दुनिया में सबसे बड़े साहूकार देश कौन से माने जाते हैं, जिन देशों में कौन सी ऊर्जा ज्यादा भरी पड़ी, तेल, घी नहीं, घृत याद को कहा जाता है, जो बाप को पहचानते हैं और पहचान करके उस साकार में निराकार को याद करते हैं वो घृत पीते हैं, बाकी जो साकार को पहचानते भी नहीं, साकार की जीवन कहानी को कैसे पहचानेंगे, निराकार की जीवन कहानी को भी कैसे पहचानेंगे। भारत में तो कहा जाता है तू साकार है सो निराकार है, तुलसीदास ने तो लिख ही दिया है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो जो तेलंगाना वाले हैं ना, उन्होंने अपना देश अलग कर लिया, पहले सब आंध्रा वाले थे, सारे ही अंधे थे, अभी उन्होंने समझा कि हम ज्यादा बुद्धिवादी हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा ज्ञान धन वाले हैं, ज्यादा बुद्धिवादी हैं, तो तो उन्होंने अपना देश तेलंगाना अलग कर लिया। जो समझते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि तो वही आत्माओं का बाप निराकार बाप है जो जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आता, इसलिए एकादर्शी होकर रहता है, अखूट ज्ञान का भंडार है। उसको याद करने वाले और पहचान करके साकार सृष्टि में किसी शख्सियत में याद करने वाले वो आंध्र प्रदेश वाले, जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक किनारे पर रहने वाले, पास पास पास। पहला पास कौन सा? पहले नंबर का पास कौन? जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक रहे पड़े हैं। बताओ भारतवर्ष में कौन सा स्टेट है जो ज्ञान सागर के ही नजदीक रहा पड़ा है और स्टेट ज्ञान सागर के इतने नजदीक नहीं है? वो है सिर्फ एक स्टेट, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना भी बहुत दूर हो गया माना। जो मुस्लिम राष्ट्र है और अभी क्रिश्चियन राष्ट्र अमेरिका में भी तेल निकल पड़ा है ढेर सारा, आपाधापी करके भी उन्होंने ढेर सारे तेल वाले देशों के ऊपर राज्य जमाया था। तो ये दो देश हैं जिनमें तेल भरा पड़ा है, मिट्टी का तेल को देह अभिमान की मिट्टी का तेल, तो वो भी आए हुए हैं क्या? तो विनाश किसका होना है? किसका विनाश होना है? विनाश कौन करेंगे? महाराष्ट्र वाले जिनकी राजधानी हर हर बम्बई बम बम की नगरी बॉम्बे है, वो विनाश करेंगे और तेलंगाना वालों का विनाश होगा। जिनको बड़ा अहंकार है कि हमारे पास जितनी धन संपत्ति है उतनी धन संपत्ति दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती, अरे माया की नगरी है, उससे जास्ती तो कोई भी विजयी नहीं हो सकता। माया का राज्य इससे सत्य रूपी रंगमंच पर आधा समय चलता है और ईश्वर का राज्य भी आधा समय चलता है। ईश्वर जो राज्य स्थापन करता है वो सुख की दुनिया स्वर्ग का राज्य स्थापन करता है, जिसकी मान्यता मुसलमानों में भी है, जन्नत कहते हैं, और क्रिश्चियंस में भी है, हेविन कहते हैं, नाम भी देते हैं हेविन के, जैसे हेविनली गॉडफादर। देहधारी मनुष्य गुरु, चाहे वो इस्लामी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, रशियंस हो, नास्तिक, सब देहाभिमानी सांधे हैं। उनका विनाश होना है, स्थापना किसकी होनी है? स्थापनाकारियों का स्थापना होनी है और विनाश करना भी त्रिमूर्ति शिव का काम है, शिव का ही काम है ना, तीन देवताओं के द्वारा कार्य कराता है ना। तो विनाश का कार्य नहीं होगा, पुरानी दुनिया पुराना मकान गिरेगा नहीं तो नया मकान बन जाएगा क्या? बन ही नहीं सकता। तो बताया इन महाराष्ट्र वालों को, बॉम्बे वालों को, आंध्र वालों को, जो अंधरे हैं उनको, इनको कहा जाता है महाराष्ट्र वाले, बॉम्बे वाले, आंध्र वाले, तेलंगाना वाले, बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश है। किसको देखकर खुश है? बच्चों को देख करके खुश है। कौन से बच्चों को देखकर खुश है? बाप दादा कौन से वंश के बच्चों को सामने देख रहा है, किनको देख करके खुश है? सूर्यवंशी बच्चों को देखकर खुश है, क्योंकि जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनमें ही आधे हैं विनाशकारी, जो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में 75 के बाद से लेकर के अब तक आ रहे हैं और उनमें ही स्थापनाकारी हैं, आधे स्थापनाकारी और आधे विनाशकारी। उन बच्चों को देख करके खुश हैं कि जो बाप ने सेवा दी है वो सेवा तो करने वाले हैं, और हर एक बच्चा को शांत करके अपना या बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे। क्या नाम के आधार पर प्रसिद्ध होता है? नाम होता ही है काम के आधार पर। क्या जैसे नाम है राम, रमिते योगिनो यस्मिन इति राम, जो योगियों के दिल में रमण करता रहता है, योगी लोग जिसको याद करके बड़े प्रसन्न खुश होते रहते, उसको कहते हैं राम। माने हीरो पार्टधारी विश्व पिता आदम को सूर्यवंशी बच्चे मनुष्य सृष्टि का बाप, चाहे वो आत्मा बनते हैं या देवान में रहते हैं, वो तो सारी दुनिया के फैमिली प्रसिद्ध है ही, क्योंकि सारी दुनिया निराकार को मानती है, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, स्वधर्मी हो विधर्मी हो। लेकिन ये बच्चे महाराष्ट्र बॉम्बे आंध्रा वाले, ये ऐसे बच्चे हैं जो बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो निर्वैर भाई ने पूछा, बाबा एक बात और पूछनी। क्या बात? सभी ब्राह्मणों को मिलकर कौन सा एक संकल्प करना चाहिए? सभी ब्राह्मणों को मिलकर के वर्तमान समय के अनुसार कौन सा एक संकल्प इकट्ठा करना चाहिए? बाप दादा ने बोला, ये तो अधिकार है आपका, इसलिए इस अधिकार को प्रेजेंट करने के लिए बाप देख रहा था कौन कौन क्या कहां तक पहुंचे हैं। एक संकल्प में टिकने के लिए, इकट्ठा एक संकल्प करने के लिए कौन कौन है, कौन से नंबर वाले धर्म के हैं, कौन कौन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से, जब से दूसरे दूसरे धर्म वाले आते हैं, दूसरे दूसरे राज्य स्थापन करते हैं, दूसरे दूसरे मतें फैलाते हैं, दूसरे दूसरे क्रियाकर्म करना शुरू कर देते हैं, तो कौन कौन बच्चे हैं और वो क्या हैं? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्ध वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, माने उन धर्म पिताओं के बाद में सृष्टि पर रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हैं, या सतयुग त्रेता सूर्यवंश चंद्रवंश से आए हुए भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं, क्या हैं? और वो सब कहां तक पहुंचे हैं बाप के नजदीक? सबकी पुरुषार्थ की दौड़ एक जैसी होगी या नंबरवार होगी? नंबरवार ही होगी। तो बताया कहां तक पहुंचे? पहुंचे हैं, बाकी पुरुषार्थ अच्छा किया है। किसने अच्छा किया है? जो बाप के सामने बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए कहा। तो निर्भय भाई ने कहा आगे आगे, फिर विजय भी अच्छा पुरुषार्थ किया है तो विजय जरूर है। इसलिए बाबा ने देखा तो अभी ऐसा पुरुषार्थ किया है, तो बाबा ने अभी देखा कि लास्ट तक सभी लक्ष्य जो रखा है, कौन से लास्ट तक? दुनिया का संपूर्ण विनाश होने तक, महाविनाश। सामान्य विनाश तो दुनिया में होता ही रहता है, लेकिन आखिरी विनाश जिसके बाद फिर 2500 वर्ष तक कोई विनाश नहीं होगा। तो लास्ट तक सभी ने लक्ष्य जो रखा है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, चाहे वो विनाशकारी बंबई कलकत्ता वाले हों और चाहे वो स्थापनाकारी नॉर्थ इंडिया के दिल्ली वाले हों, करके ही दिखाएंगे। यही सभी को उमंग है और इस उमंग से ये ग्रुप आगे बढ़ता जाता है। कौन सा ग्रुप बताया? कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप आगे बढ़ता जाता है? आंध्रा और अरे महाराष्ट्र और बंबई, तेलंगाना जो भी तो नाम दिया है, जिनके आंगन में तेल बहुत है, तेल को तो रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन नहीं करेंगे तो बहुत नुकसानकारी, तो घी को रिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो गऊओं का घृत भारत में प्रसिद्ध है, ये ह्यूमन गऊएं हैं, भक्ति मार्ग की जानवर गऊएं नहीं है। तो उन ह्यूमन गलियों का जो भी खास करके भारतीय गऊएं हैं उनकी बात बताई, आंध्रा वाली गऊएं, क्योंकि उन गऊओं के पीछे पुराणों में शास्त्रों में बच्चा बुद्धि कृष्ण को दिखाया जाता है। तो बच्चों की बुद्धि को क्या कहेंगे? समझदार, राजदार या राज को न जानने वाले? राज विद्या राज गुह्यम, गीता में गाया हुआ है ना, इसके राज्य को नहीं समझने वाले हैं। तो बताया ये अंधे जरूर हैं, लेकिन लंगड़े से एग्रीमेंट किया हुआ है, दिल के अंदर है कि एग्रीमेंट प्रैक्टिकल में आएगा। लंगड़े कौन है? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो हैं रुद्र के बच्चे, विकराल रूप धारण करने वाले बच्चे। उन बच्चों की शिफ्ट है कि वो लूले लंगड़े हैं। क्या, किस बात में लूले लंगड़े हैं? दौड़ में, दौड़ लगाते हैं पुरुषार्थ की, तो लंगड़े होने के कारण बीच बीच में माया उन लगन चंदों को नीचे गिरा देगी, और जो अंधरे हैं, उनकी टांगे तो सही सलामत है, सारी इंद्रियां सही सलामत है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के ऐसा कर्म किए हैं इंद्रियों से कि पाप कर्म नहीं किए हैं ज्यादा, नंबर वार तो है, अपवित्रता नहीं धारण की है, विभिचारी नहीं बने हैं, क्या तो विभिचारी न बनने के कारण जन्म जन्मांतर के होने के सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है उसके संस्कार धारण किए हैं, इसलिए वो अंधों का ग्रुप जिस आंध्र प्रदेश में यादगार में आज भी हर कन्या माता का नाम लक्ष्मी कहा जाता है, वो ग्रुप आगे बढ़ता जाता है। हरेक बच्चे के ऊपर देखे हर बच्चे के ऊपर विजय का तिलक दिखाई देता है, चाहे वो आंध्र का हो, चाहे वो महाराष्ट्र या बंबई का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो, तेलंगाना का काम ही ऐसा है, करो अलगाववाद, एक को खंड खंड करके कम से कम दो तो कर दो, जैसे भारतवास भारत के अलगाववादियों ने अलग अलग स्टेट बना दिए, अलग अलग अपना राज्य कर लिया, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश शेर की शक्ल में दिखाया जाता था, उसका भी सर काट दिया, गेंडा बना दिया, शेर शेर नहीं रह गया, गेंडा बन गया, उसके ऊपर चाहे जितना प्रहार करो ग्लानी का, उसकी चमड़ी के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, उस गेंडे की चमड़ी की ढाल जितनी अकाट्य होती है कि कोई भी शस्त्र का वार उस ढाल के ऊपर असर ही नहीं करता। तो वो गेंडा उत्तर प्रदेश के लिए बोला है अव्यक्त वाणी में, उत्तर प्रदेश को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, क्या ऐसा धर्म युद्ध का खेल दिखाएगा जिन्हें तेल का बड़ा गर्व है, अपनी धन संपत्ति का बड़ा गर्व है, तो धराशायी हो जाएंगे। निर्भय भाई ने कहा हाँ विजय तो निश्चित है, किसने कहा, हद के निर्भय भाई ने या बेहद के निर्भय भाई ने, किसकी विजय निश्चित है, है? आंख लड़ाने की बात को जो सपोर्ट करने वाले हैं उनकी विजय निश्चित है, आंखों को इंद्रियों को विविचारी बनाने वालों की विजय निश्चित है, या जो इंद्रियों को अविविचारी बनाने की बात करते हैं उनकी विजय निश्चित है, कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है पवित्रता, और पवित्रता इंद्रियों के द्वारा ही धारण की जाती है, उस पवित्रता को धारण करने में लक्ष्मी परम पवित्र है, जो लक्ष्मी बबर शेर की भी सवारी करती, माना बबर शेर का जो पार्ट है उसको भी कंट्रोल में कर लेती है, या कहो उसको भी मना लेती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो निर्भय भाई ने कहा विजय तो निश्चित है, ये कौन ने कहा है, बेहद के निर्भय भाई की विजय निश्चित है या हद के निर्भय भाई की विजय निश्चित है, जो आंख लड़ाने की बात को सपोर्ट करते हैं, किसकी विजय निश्चित होगी? अरे पवित्रता को सपोर्ट करने वाले बात वही निश्चय दिलाएगी। विजय तो है, बाप दादा ने बोला, लेकिन यह विजय अपने आत्मविश्वास की क्या, आत्मा में कितना विश्वास भरा हुआ है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं देहभान वाला सांधा नहीं हूं, देहभान वालों को सपोर्ट करने वाला नहीं हूं, मैं स्वयं भी दुर्योधन दुशासन नहीं बनता, दुर्योधन दुशासनों का काम है देहभान के आधार पर द्रौपदियों के साथ बलात्कार करना, बलपूर्वक कार्य करना, उनको कहते हैं बलात्कारी। भगवान और भगवान के बच्चे बलात्कारी नहीं हो सकते। दुर्योधन दुष्टासन नहीं हो सकते। भले ब्रह्मवाक्य मुनियों में है, भगवान का ही बोला हुआ महावाक्य है, इस दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, सब मनुष्य, नारियों को नहीं बोला, सब नारियों, क्यों बोला? प्रैक्टिकल बात है तो बोला। घर घर में दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं, घर घर में द्रौपदियां बैठी हुई हैं, जो दुर्योधन दुशासनों के द्वारा उन द्रौपदियों की इच्छा हो या न हो उनके ऊपर बलात्कारी बनते हैं। तो आत्मविश्वासी कैसे बने? देवानी हुए ना, आत्मा के ऊपर विश्वास करने वाले कहां हैं? जो गायन है अपन को आत्मा समझो, स्वधर्म निधनम से, अपने आत्मिक धर्म में मर जाना भी अच्छा है। धर्म परिय पर धर्म न छोड़ी, देहानी मत बनो, देहभान का प्रदर्शन करने वाले मत बनो, दुर्योधन दुशासन। तो आत्मविश्वास, देह का विश्वास नहीं। देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहे। आज बड़े राष्ट्रपति बने पड़े हैं अमेरिका के, बड़े महामंत्री बने पड़े कोई भी देश के, क्या लंबे समय तक स्थायी रहेंगे? अरे ये तो अल्पकाल का है, आत्मा सदाकाल के लिए है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। तो पहली बात आत्मविश्वास की, और दूसरी बात जो आत्मा के निश्चय में रहने वाली आत्माएं हैं रुद्रमाला के मणके या विजयमाला के मणके, आत्मविश्वास में रहने वाली आत्माएं उनमें भी निश्चय, चाहे वो रुद्रमाला के मणके हों चाहे वो विजयमाला के मणके हों, दोनों में पक्का निश्चय। क्योंकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों के परिवार को मिलकर के एक नई दुनिया का परिवार बनेगा, चंद्रवंशी राधा और सूर्यवंशी कृष्ण, दोनों का मेल होता है तब एग्रीमेंट पूरा होता है और परिवार नई दुनिया का बनता है। जिस परिवार का दुनिया में आज भी गायन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में इसी दुनिया में भाई भाई बनेंगे, वसुधैव कुटुंबकम बनेगा, सारी वसुधा सारी पृथ्वी के सब धर्मों के मनुष्य मात्र एक बाप को पहचानेंगे। तो दोनों के मिले हुए राज्य में काम में आए। निर्वैर भाई ने कहा संस्कार मिलन के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी अभी तक उसमें सफल नहीं है। तो संस्कार मिलन की सफलता कैसे होगी बाबा? उसका सहज तरीका क्या है? अभी तक एरिया के लिए, कुछ और बातों के लिए आपस में संस्कार नहीं मिलते, वेद में बुद्धि कैसे ले जाए? इन सब बातों से हम ऊपर चले जाए। तो बोला, सभी के पास लक्ष्य है कि सबको संस्कार मिला करके नई दुनिया में जाना है, क्योंकि सत्युग त्रेता में कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, सबके संस्कार मिलेंगे। तो हमको जाना है, ये सारा प्लान तो बुद्धि में है, सभी के पास है। अभी इस प्लान के ऊपर अटेंशन थोड़ा ज्यादा रहे, भावना आवे, शुभ भावना सबके प्रति आवे, हर धर्म की मनुष्य मात्र की आत्माओं के लिए शुभ भावना आए, शुभ भावना और शुभ कामना। भावना आने के लिए थोड़ा सा अटेंशन इसमें दे दें कि हमारे अंदर जो परिवार का प्यार है, परिवार बनता ही है एक बाप से, क्या परिवार का एक बाप मुखिया होता है या ढेर सारे बाप मुखिया होते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक सब बाप बन के बैठेंगे वसुधैव कुटुंबकम के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई बन के रहेंगे, भाई भाई का प्यार हो जाएगा? कदापि नहीं। परिवार का प्यार तभी पैदा होगा जब एक बाप को पहचाने और साकार में पहचाने। परिवार का प्यार संगम पर ही ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। संगम युग है ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग काल का समय। जैसी यहां शूटिंग करेंगे वैसा ही ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाएंगे। फिर निर्भय भाई ने कहा, ये भूल जाते हैं कि ईश्वरीय परिवार 5000 साल के बाद इस रूप में आकर मिलता है। इतने बाद वर्षों के बाद इसी स्वरूप में मिलते हैं। ये भूलने के कारण फिर आपस में थोड़ा बहुत संस्कारों के मिलन में और सहज हो जाए। अगर ये दिल में आ जाए कि हम पूरा कल्प अलग रहे, भले साथ में पार्ट बजाते होंगे पर नाम रूप तो याद नहीं था, अभी इस नाम रूप से आपस में मिलते हैं तो कितना आपस में प्यार होना चाहिए ये भूल जाता है। कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल कैसे सबका आपस में मिलकर के कैसे आगे बढ़े, उसके लिए एक लक्ष्य आपकी तरफ से सबको एक लक्ष्य मिल जाए, उस मिलने की तरफ हम जाएंगे। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा बोली, लक्ष्य यही रखें कि होना ही है। क्या ऐसे तो नहीं कि नहीं होना है? नई दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगी, जन्नत आएगा, जन्नत आएगी तो सबके संस्कार मिलेंगे। सभी यही सोच रहे हैं कि यह इस बात पर क्यों सोच रहे हैं कि सबके संस्कार मिले। सारी पढ़ाई ठीक है और पढ़ने वाले भी ठीक हैं, तो फिर ये क्वेश्चन तो है ही नहीं कि संस्कार कैसे मिले। अभी यही लक्ष्य रखो कि हम बनने हैं, उसमें आपका पार्ट सहयोगी बनने का नहीं है। लेकिन खुद अपने को लाइट बनाना है, दूसरों का सहयोग तब बनेंगे जब खुद लाइट बनेंगे। खुद का सुधार फिर
परकसना, अटेंशन अपने ऊपर देना है, ये जरूरी बात है। और बाबा ने देखा है कि सबको इसका बहुत ख्याल है कि बनना ही है, बन रहे पुरुषार्थ अनुसार तो नंबर लेंगे, लेकिन पहले ये ध्यान रखो, अभी तो हम जैसे पूछते हैं बाबा, वैसे आप भी आपस में रूढ़ ध्यान करके जो राजधानी का सीट है वो अवश्य लेंगे। तो अभी ये संकल्प रखो कि अब राजधानी में क्या सीट लेनी है, संकल्प वो ही रखेंगे जो इस बात को मानेंगे बाप दादा व्यक्त की कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है। इसका जो अपोजिशन करने वाले हैं और बाप दादा का मुंह ही मुंह हाथ से बंद कर लेते हैं, अरे बाबा आप माउंट आबू में बैठे हैं, आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, कहीं आपकी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? अब ऐसे की बुद्धि में कैसे डाला जाएगा कि दिल्ली में राजधानी स्थापन बाप दादा कर रहे हैं। तो देखो राजधानी में बैठे तो हैं, ब्रजमोहन भाई के लिए ये बात बोली होगी, ब्रजमोहन का भी वेद का अर्थ वही क्या, ब्रज और निर्वय, ब्रज को मोहने वाले। अभी दिल्ली की राजधानी में तो हैं, बैठे तो हैं, लेकिन अभी दिल्ली की राजधानी में आपके दिल्ली राजधानी में आपके साथ हो और भी राजधानी बुद्धि में रखने, किसी भाई ने कहा बाबा आपने तो सारी सीट शक्तियों को दे दी, बाबा ने बोला क्यों नहीं, वो हमेशा ही देखो ये देखा गया है जब रेस होती है ना तब माताएं कन्याएं ये नंबर ले लेती हैं, या दुनिया की पढ़ाई में भी देख लो कौन नंबर ले रही है, कन्याएं माताएं नंबर ले रही है, जब फाइनल होता है तो यही रिजल्ट निकलता है। लेकिन आपके पास भी लक्ष्य है कि हमको भी नंबर लेना है और पास होना है, तो बाप दादा या ड्रामा दोनों तरफ ध्यान रखें। निर्वैर भाई ने कहा कौन सी बात में फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाबा ने कहा फॉलो फादर का अगर अटेंशन है तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में सब प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए, क्या फादर भी परिवार में फादर प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है कि सिर्फ निराकार आत्मा के द्वारा होता है, प्रैक्टिकल तो शरीर के साथ ही हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बाप भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ में सब बच्चे भी होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, बाप निराकारी स्टेज में है तो बच्चे भी निराकारी स्टेज में दिखाई दें, जिसे प्यार होता है उसके समान बनना पड़ता है, बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी, लेकिन प्रैक्टिकल में बाप को देखते ही नहीं, साकार में बाप को देखते ही नहीं, जानते ही नहीं तो देखेंगे कैसे, मानते ही नहीं, क्यों क्यों, क्योंकि माया बेटी के प्रभाव में आए हुए हैं और माया ने प्रकृति जगदम्बा से हाथ मिलाया हुआ, जो प्रकृति जगदम्बा सबसे जास्ती दुनिया में पावरफुल है, तो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो सभी की अभी जैसे बाप चाहता है वैसे ही हो रही है, लेकिन टाइम पर तो हो ही जाता है, लेकिन सराह हो ये बात को, क्या माया के प्रभाव में कभी ना है, नहीं तो माया विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती, दौड़ करने वालों के सामने दीवार खड़ी हो जाए तो दीवार से टकराएंगे। तो वो भी हो रही है और होगी, इसलिए यह भी फिक्र नहीं है, सभी को साथ कर रहे हैं और सभी अभी सभी की बुद्धि में यही है कि हम नंबर जरूर लेंगे, हो जाएंगे, तैयारी हो गई है। कुछ है निर्भय भाई ने कहा सदा उम्मीदवार रहेंगे, उम्मीद और उम्मीद होनी ही है, ये तो हुआ ही पड़ा है, बाकी सिर्फ बीच बीच में थोड़ा सा रूप बदलता है, तो बदलते हुए रूप को किसी न किसी रीत से कोई बात होती है तो हो ही जाती है। इसलिए बाप दादा भी इतना नहीं कह सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ का स्वरूप दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है लेकिन सदा नहीं दिखाई देता, कभी कैसे कभी कैसे, कभी नीचे कभी ऊपर। अभी इसको स्थिर करो और सब जोश दिखाओ तो हम सब तैयार हैं, हम सब माने सब धर्म वाले तैयार हैं, सब कुलियों वाले ब्राह्मण तैयार हैं, कोई किसी भी धर्म में कन्वर्ट होने का भी रहे हो, द्वापर युग से द्वैतवादी युग से द्वैतवादी धर्म पिताओं दूसरे दूसरे देश के देशवासियों से प्रभावित होकर के रहे ना, भारतवासी प्रभावित हुए तो वो सब जैसे वहां कन्वर्ट हुए थे वैसे अब ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, हो गए हैं, सब तैयार है पेपर देने के लिए, पेपर देने के लिए तैयार हैं सभी, पूछो सभी से पेपर देने के लिए तैयार हैं, कितनी बार पूछा तैयारी की बात, एक बार पूछी फिर दूसरी बार पूछी फिर तीसरी बार पूछी, और उम्मीद है तो प्राप्ति भी उतनी है, जितनी उम्मीद अंदर में भरी हुई होगी उतनी ही प्राप्ति करेंगे, और उम्मीद उतनी ही अंदर में भरेगी जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी, ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा तो उम्मीद भी नहीं प्राप्त करेंगे, तो वो पढ़ाई का नशा रहता है, उम्मीद का नशा रहता है, उम्मीद के बल पर दुनिया चलती है, रहता तो है बीच बीच में थोड़ा टाइम आता है तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ये सदा नशा सदा रहे इसका अभी अभ्यास चाहिए, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, किस बात में अटेंशन देना पड़ेगा, अरे पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दिया है इसलिए उम्मीद भी कम रहती है, ईश्वरीय पढ़ाई है दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई, सुप्रीम गॉड फादर पढ़ा रहा है, इस बात पर निश्चय रहना चाहिए पढ़ाई है ना ईश्वरीय, पढ़ाई में तो अटेंशन दिया जाता है ना, और फिर ये तो है ईश्वरीय पढ़ाई, कोई देहधारी धर्म पिता धर्म गुरु की पढ़ाई तो नहीं है, ये तो निराकार गॉडफादर सुप्रीम गॉडफादर की पढ़ाई है, जो आपको न अनुभव नहीं है ना, इसलिए उम्मीद हिल जाती है, इसलिए सभी को नई साल की मुबारक ही है, मुबारक दी है, और इस नए साल में उम्मीद का कदम आगे बढ़ाने का वरदान है। अपने को भरपूर और बाप समान समझ करके ऐसे अपने को सदा तैयार रखना, किसके समान समझ करके, बाप समान समझ करके, ब्रह्मा को बाप समझना नहीं है, उसका तो नाम ही है ब्रह्मा ने बड़ी मामा ने मां, मां के समान बनने की बात नहीं बताई, बाप समान बनना, बाप का मतलब ये नहीं है कि निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु बनना है, वो निराकार आत्मा समान बनेंगे तो परम धाम में पड़े रहेंगे, सोल वर्ल्ड में पड़े रहेंगे लंबे समय तक, इस दुनिया में आकर सुख नहीं भोगेंगे, तो है साकार मनुष्य सृष्टि के साकार बाप की बात, आदम एडम आदिदेव शंकर की बात है, ऐसे अपने को सदा तैयार रखना, अभी की जो भी समय है उस समय में अपन को ऐसे ही तैयार करें, कैसे, बाप समान, जैसे बाप का पुरुषार्थ है, जैसे बाप मनुष्य सच्ची का बाप, निराकारी बाप के समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं, जैसे बाप बच्चों से भी चाहते हैं, जैसे बाप सर्वगुण संपन्न है, कौन सा बाप सर्वगुण संपन्न, देवताओं के लिए कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, निराकार आत्माओं का निराकार बाप कोई सर्वगुण संपन्न बनता है, अरे वो निर्गुण है या सगुण है, वो तो निर्गुण निराकार है, सगुण तो नारायण बनता है, नारायण को बनाने वाला निराकारी सो साकारी भगवान है, जो स्वयं निराकारी बनता है, साकार से निराकारी बनता है, और साकार शरीर में भी रहता है, साकार कर्मेंद्रियों से कर्म भी करता है, परंतु उन कर्मेंद्रियों का रस नहीं लेता, कर्मयोगी है 100% पक्का, ताज तत्वधारी है, दुनिया सारी दुनिया की सारे विश्व की जिम्मेवारी का ताजधारी है, उसकी यादगार है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, गरीबों का भी नाथ, साहूकारों का भी नाथ, ऐसे नहीं श्रीनाथ श्रेष्ठ देवात्माओं का ही नाथ हो, नहीं, सारे जगत की जो भी मनुष्य आत्मा है, चाहे वो देवात्मा बनने वाली हो, चाहे वो असुर की असुर ही रह जाने वाली हो, साप की जिम्मेवारी लेने वाली आत्मा, साप का उद्धार करने वाली आत्मा, उद्धार का मतलब यह है उत्तम माने ऊपर, हर माने हरण करने वाली, अगर न भी जा सके पुरुषार्थ में स्वेच्छा से तीखी, तो भी जबरियन उनको नीचे से ऊपर ले जाएगा, उसको कहते हैं उद्धार करता, ऐसे ये विशेषताएं हरेक बच्चा अपने में अनुभव करे, अभी भी समय है, जो कुछ रहा हुआ है वो सब अपने में धारण करके धारणा रूप का साक्षात्कार करो, अभी क्या करें, ऐसे होगा कैसे होगा, नहीं ये क्यों क्या कैसे का क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाप ने अपने पास कुछ भी रखा नहीं है ज्ञान सुनाने के लिए। सारा ज्ञान सृष्टि का आज मध्यम तक यह ज्ञान बच्चों को दे दिया है। सब बातों का क्वेश्चन, सब प्रश्नों का समाधान दे दिया है। अभी बाप ने सबको हिम्मत दी है। उमंग दिया है तो उसी हिम्मत और उमंग इन दोनों को साथ लेकर आप भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ओम शांति।